है वो बिल्कुल ये समझिए कि कानों का आभूषण है। अगर कानों में आभूषण पहनना हो तो महाराज के मुखारविंद जो कथा चल रही है ये निश्चित रूप से आभूषण है। एक एक जो शब्द है वो निकल ना जाए, जैसे कंजूस व्यक्ति होता है ना तो वो नोट गिनता है तो बड़ा ध्यान से गिनता है, एक एक नोट नहीं दो ना चले जाए। तो ऐसा भी सोचना चाहिए कि अभी तो कथा चल रही है, अभी हम थोड़ा और बाहर का भी सोच लेते हैं। तो ये जो कथा चल रही है ये बहुत ही अमृतमय है और एक एक शब्द को हमें उस कंजूस व्यक्ति की तरह से अपने पास में ऑब्जर्व रखना है। कोई भी बिल्कुल निकल नहीं पाए एक भी शब्द, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे ये कथा की जा रही है, हमारे जीवन के लाभ के लिए कथा की जा रही है। और मोबाइल के लिए जैसे प्रभु जी ने उस दिन कहा था कृपा करके अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में कर दें ताकि बीच में कथा में व्यवधान ना पड़े। और जैसे अगर कोई बच्चा बीच में जैसे कल एक शोर कर रहा था बच्चा, अगर कोई ऐसा छोटा बच्चा गड़बड़ करे तो कृपा करके माताओं से विनती है कि वो बच्चे को लेके बाहर चेयर पर बैठ सकते हैं ताकि कथा में कोई बाधा ना पड़े। तो हम आइए स्वागत करते हैं भाई चंदे, हरे कृष्णा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
तो आज कथा सत्र के फोर्थ डे, तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महाराज हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रह्लाद को बहुत उत्पीड़न करके मारने का हर प्रकार प्रयास करके उन्होंने अंततः उनको दोबारा गुरुकुल में भेज दिया था, गुरुगृह में, और वहां पर उन्होंने उनको खूब प्रयास किए सिखाने के लिए गुरुद्वय, और अंततः बाद में पूरा गुरुकुल को ही उन्होंने प्रीचिंग करके डिवोटी बना दी। जब एक बार नारद जी ने बताए युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज बोले पहले मुझे ये बताओ कैसे प्रचार किए, क्या बोले कैसे, सारे तो स्कूल ही था असुरों का, तो ऐसे कैसे किए। नारद जी ने दो अध्याय उसका वर्णन करते हैं, 6 और 7। छठाध्याय का शुरुआत में सीधा कुमार प्रह्लाद ने अपने सहपाठियों को क्या शिक्षा दिए उसी को शुरुआत की। इस क्रम से सबसे पहले बोलते हैं कि जैसे बालक लोग आ गए तो प्रह्लाद महाराज ने पहले देखे कि एक सब मेरे उम्र का है, जितने मेरे क्लासमेट है सब एज सिमिलर है, समवयस्क है सब। दूसरा इस एज में 5-6 साल के एज में पढ़ते हैं, उनका कोई मैनेजमेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं, थोड़ा वो जो टीचर दिया हम दस इतना करेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, सोएंगे, दैट्स इट, सो हैप्पी लाइफ। तो खुद से कोई किसी के ऊपर तनाव टेंशन ऐसे कुछ नहीं, दायित्व नहीं है। तीसरा, क्योंकि अभी कम उम्र है इसलिए कभी कड़ुसता, कभी कंटामिनेशन, कभी ये जो पॉलिटिक्स नीति ये सब अंदर हृदय में नहीं है, अभी हृदय उनका साफ है। जितने बड़े होते हैं इतने सब कपटता भरते हैं ना उसके अंदर, अभी निष्कपट हृदय है उनके, छोटे हैं और जोश में है। ऐसे नहीं कि उनको बीमारी है कुछ नहीं, कोई बीमार बीमार नहीं, बच्चे के समय तो बिल्कुल फिट रहते हैं, कोई शिकायत नहीं, किसी प्रकार का शारीरिक शिकायत नहीं है। और दूसरे दोपहर के समय अभी नींद झपके कभी नहीं है, किसी प्रकार आलस से कुछ नहीं है और पूर्ण उत्साहित है, क्योंकि खेलना चाहते थे सब, पूरे उत्साह में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारे मेरे पास आए कि मेरे प्रति उनका गुरु वृद्धि है, क्योंकि मैं राजकुमार हूँ, राजा का बेटा हूँ और ये सब मंत्री फंत्री के बेटे होंगे, और दूसरे मेरा जो रूप मेरा जो गुण में वो इतने प्रभावित है, मेरे मित्र जैसे कोई होता ना क्लास में, कोई एक ऐसे व्यक्ति हो जिनके पास सभी जाना चाहते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, उनके साथ फोटो खींचना चाहते हैं, उनके साथ है ना, तो इस प्रकार पूरे इंस्टीट्यूशन में प्रहलाद को सभी पसंद करते थे, था ही भी अभी तो, इसलिए उनके प्रति बहुत उनका सम्मान बुद्धि, सम्मान बुद्धि था, गौरव बुद्धि था सब लड़कों का, इसलिए सारे उनके पास बढ़ते कुमार आप जो बोलेंगे हम मानेंगे, आप नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, हम आपको मानते हैं, आप जो बोलेंगे हम मानने के लिए तैयार, इस भावना था, इस सरेंडर मूड था उनका। तो लाल महाराज देखे ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, अगर कोई लोहे की छड़ी को लोहे के डंडे को आप बैंड करना चाहते हो, बैंड करने के लिए आप कितने पिटाई करो हैमर ला करके, पिटाई करते जाओ वो हैमर भी तोड़ जाए, आपका हाथ बैंड हो जाए, लेकिन ये लोहे तो बैंड नहीं होगा। लेकिन अगर उसको आग के साथ रखो और रेड हॉट हो जाए, आग हो जाए, तब तो एक मारो तो बैंड हो जाए एक में, और बाकी में तो कुछ नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार एक अवस्था होता है, इस अवस्था में अगर किए तो बिल्कुल लगेगा प्रभाव पड़ेगा। तो प्रहलाद महाराज के हर प्रकार से बिल्कुल रेड हॉट स्टेज है ये, बिल्कुल भी फिटिंग स्टेज है, अभी उनको पिचिंग करना चाहिए। अब गुरुजी भी नहीं, वो खा पीकर सोए हैं, नो डिस्टर्बेंस, फर्स्ट क्लास है, किसी को पता नहीं, पिताजी भी अपने सब कॉलेज के अंदर में ही हूँ, इनसाइड हूँ, मेरे साथ ही क्लासमेट है उनके, तो बाहर से आना जाना ऐसा कुछ नहीं। तो इस अवस्था का फायदा उठाया उन्होंने, उठा करके शुरुआत उन्होंने की है, देखो हे मेरे मित्र असुर पुत्र बालक मेरे साथी लोग, आप जो खेलकूद करना चाहते हैं मेरे मत में खेलकूद नहीं, आपको पता नहीं क्या करना चाहिए, इस एज में तो खेलना कूदना चाहिए, बालकों ही कहेंगे, बोलते नहीं, इस एज में भक्ति करना चाहिए। साधारण पूरे भारतवर्ष में केवल छावला गांव में नहीं, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति बोले ये कोई उम्र है, टिक्का लगा कर अभी से उम्र है, अभी झोली मेला पकड़ लिया, दादा कब करना है ना, जब चश्मा लग जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, कानना को सुनना नहीं पड़ेगा, बुजुर्ग हो तब कर, बोले दादा आप तो बुजुर्ग हो गए आप कर रहे हैं क्या ना बेटा, मैं इतने तो मुझे किसी उम्र में जब यही उम्र है करने की तो आप करो, वो नहीं करते लेकिन बोलेंगे अभी यही वैसे मत करो। तो ये साधारण तौर पर यही समझ है सबका। और पूरी जगह पर देखते हैं स्वभावतः जो बालक अवस्था होता है ना, कहते हैं शंकराचार्य भी कहते हैं बालावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी रखता, वृद्धावस्था चिंताग्रस्ता। तो इसलिए ये बालक अवस्था, तो लेकिन सबसे पहले उनके कंडम को नहीं खेल कूद निकले हैं, को कुमार आचरित प्राज्ञों धर्मान भागवतान यह। बोले जो कुमार अवस्था से भागवत धर्म करेंगे वो वास्तविक विज्ञ लोग के प्राज्ञ हैं, उनको माना जाएगा अच्छे व्यक्ति। आप लोग अच्छे बनना चाहते हैं ना, कौन बच्चे बोलेंगे कि अच्छे नहीं, सभी अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा बालक बनना चाहते हैं, यू वांट टू बी गुड बॉय। तो देखो ये नहीं करना चाहिए, इस समय में ही काम करना चाहिए। इस समय क्या करना, भागवत धर्म को पालन करना चाहिए। सब सीरियस हो गए, अभी भागवत धर्म करना, खेलकूद छोड़ना है। प्रश्न सबके मन में है, अब भी यही क्यों करें, बाद में करने से नहीं चलेगा। बोलते हैं कि सबसे कारण दे, बोले नहीं बाद में क्यों नहीं करेंगे, न दुर्लभं मानुषं जन्म, क्योंकि मनुष्य जन्म जो है ना ये बड़े आसान से मिलता नहीं, बहुत दुर्लभ। पूरे सृष्टि में जितने जीव हैं, प्राणी हैं, जितने प्रकार के शरीर है, 84 लाख प्रकार के, उसमें से 4 लाख बहुत कम है मनुष्य शरीर। तो इस शरीर को प्राप्त करने के लिए जो विकास प्रणाली है, 80 लाख शरीर को पार करते करते और 80 लाख शरीर में हर शरीर में 100-100 साल गुजार करके पूरा कोर्स कंप्लीट करके फिर जाकर मनुष्य जन्म मिलेगा, ये कहते। तो इसलिए इतने दुर्लभ है, इसे नहीं मिलने वाला है। एक तो मनुष्य शरीर मिला, उसको पूछने कितने 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 आपको सौभाग्य है, ये मनुष्य तन मिला आपको। दुर्लभंग पाने में बड़ा मुश्किल है, दुर्लभंग मानुषं जन्म, तदपि उस पर भी एक तो मिलता बड़ा मुश्किल से, लेकिन उन पर भी अध्रुवम, अध्रुवम मतलब कहने का है कि कोई निश्चित थोड़ी है कि एक्सपायरी डेट कब आ जाएगा, कोई गारंटी है, किसको पता है, कोई गारंटी नहीं किसका कब आएगा। कल ना परसों किसी ने मुझे पास एक व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा था, मैं देख रहा था कहाँ पर, बम्बई में कि कहीं एक हार्ट स्पेशलिस्ट थी माताजी, एक हार्ट स्पेशलिस्ट, उन्होंने हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल का नाम भी लिखा था, हॉस्पिटल से फोटो लिया गया था, और हॉस्पिटल में वो स्पेशलिस्ट थी और उन्होंने अपने पेशेंट को फाइल में कुछ खड़े हुए लेकर पेशेंट चेक करके आ करके वो आउटडोर में चेक करना क्या होता है, वो जो दौरा पर जाते हैं विजिट में जा कर के स्टडी करके, दो असिस्टेंट उनके सामने खड़े थे, दो डॉक्टर उनका लेडी डॉक्टर दो उनके साथ में खड़े थे और उन्होंने लिख रहे थे कुछ मेडिसिन का कुछ ऐसे प्रेस्क्रिप्शन लिख रहे थे, लिखते लिखते गिर पड़ी और दोनों लेडी डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट स्वयं थी और दोनों फिजिशियन थे साथ में, कुछ नहीं कर पाए, रामनाम हो गए। आप है उसने बिल्कुल कैमरा फोटो लिया गया, फिर देखो बोले देखो ये क्या करेंगे, स्वयं हार्ट स्पेशलिस्ट है वो हार्ट अटैक मर गए और किसी की प्रेस्क्रिप्शन लिखते लिखते और कोई होता किसी के हृदय के बारे में सुझाव लिखते लिखते अपना हृदय परिवर्तन हो गया। तो इसलिए कोई नहीं कह सकता कि किसी क्षण अगले क्षण को हम किस स्थिति में रहेंगे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए निश्चित ध्रुव मतलब निश्चितता, कोई निश्चितता नहीं है मनुष्य शरीर का कि कब तक हमारे पास है, कितने समय तक है, कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए मिलता तो बड़ा मुश्किल से, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि कब तक तेरा पास रहेगा। बाकी चीज का तो जो बाजार से खरीदते हैं वारंटी कैरेट भी देते हैं, बोलते हैं कि अगर गड़बड़ हुआ तो फ्री मरम्मत भी कर देंगे, इतना दिन तो ड्यूरेशन है ही है कुछ भी, लेकिन इस प्रोडक्ट का हमको तो पता नहीं है, तो सही लेकिन हमको नहीं पता। तो इसे अध्रुवन, तो इसलिए ये जो मनुष्य शरीर मिले उसको भरोसा मत करो कि तुम बूढ़े होगे जवानी होंगे, कोई गारंटी थोड़ी है, बूढ़े अमर करोगे बूढ़े तक रहोगे कि नहीं, ना शादीशुदा होंगे कि नहीं कोई पता नहीं, कोई गारंटी नहीं कि हो जाएगा करके। बोले एक तो दुर्लभ है, उसके ऊपर में अध्रुव है, कोई निश्चित नहीं कब तक रहेगा, लेकिन अर्थदम, लेकिन काम बनाने वाले साधन है, यही मनुष्य शरीर में जो किया जा सकता वो बाकी 80 लाख चक्कर लगा करके नहीं होगा। फिर ये हाथ से निकल गए सुजोग, फिर आपने जितने 80 लाख प्रकार के शरीर प्राप्त करेंगे ये काम नहीं कर सकते। देखिए आपने छोटे से रूम लिए यहाँ पे मंदिर के प्रांगण, यहाँ पर कोई कुत्ते बिल्ली चूहा चिड़िया कोई आते हैं क्या सुनने के लिए? नहीं, क्योंकि ये भागवत धर्म केवल मनुष्य, केवल ही मनुष्य और किसी के लिए नहीं, मनुष्य उसे बोलते हैं कि मनुष्य इंद्रलोक प्राप्त किए हैं। वो जो अर्थदम इस चीज को प्राप्त कराने वाली जो मुख्य साधन है वो मनुष्य शरीर, बाकी किस शरीर में कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए उत्सव सुन करके सीरियस हो गए, बोले हम तो लेकिन हम तो आशा करते हैं धीरे धीरे जिएंगे। बोले देखो भाई लोग आप बोलते हैं जियोगे, हम मैं मना नहीं करता हूँ जिएंगे। बोले कितने दिन जिएंगे? ना 100 साल तक तो उम्र सभी कहते हैं, ना मानता हूँ 100 साल से उम्र। 100 साल की उम्र होने पर भी आप सबको पता है आधा तो सो करके बीत जाता है। जिनको इस बारे में ज्ञान नहीं है, कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, वो तो सो करके आधा उम्र बिता देते हैं, है ना? नहीं, रात में 8 घंटा सोते हैं और दिन में 2-3 घंटा सो जाते हैं, तो 50% तो सोने में जाता है। अब सोना है कि इसी प्रकार का क्रिया है, वो मरना से कोई कम नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करते, ना पाप ना पुण्य ना कुछ, कुछ भी नहीं करते सो जाने से, तो डेड एज गुड एज डेड। तो इसलिए बोलते आधा तो बेकार जाता है, कुछ कोई काम के नहीं, सो कर बिता दिया आज, तो बाकी बच गया 50 सोते नहीं जाते 50। इसमें से जो बचपना हट है खेल कूद करके अब सयाना होने तक, आज भी हमारे सरकार मानते हैं बिल्कुल 21 साल तक तो सयाना मानते ना, 20-21 साल, बोली 20 साल तो ऐसे गया, वो तो बचपन आप खेल कूद पड़ा इसमें गया। बोले सोने को काट दो 50 साल बचा, उसमें तो बचपन से मैंने जो आपने सीरियस बनने तक वो 20 साल को घटा दो तो कोई काम के नहीं रहा ना है। बोले बाकी बच गया कितना? 30। बोले जो 100 साल में जो अंतिम 20 साल है ना, बहुत कम लोग का ही आएगा, किसी के तो आए ही नहीं, उसको पहले आउट हो जाते हैं जो नॉट आउट रहते हैं सेंचुरी तक, तो वो जो लास्ट 20 रन है उसको तो है ना नहीं। एक मुझे महात्मा एक कथा कह रहे थे ना कथा, बोले एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि करते करते किसी कल्प में बोले चलो इतने सारे जीव बनाया, क्या उनके एज डिसीजन क्या करो, सबके लिए फटी है, बोले चलो सब जने को 40 साल उम्र है, सबको 40 साल की उम्र दे दी। देख रहे बोले देखे चुप बैठे, तो थोड़े समय के बाद फोन आया उनके पास, ब्रह्मा जी माफ करे करके कौन फोन किया ना, सबसे पहले फोन किया एक गधा ने, गधा ने फोन किया बोला ब्रह्मा जी प्लीज एक्सक्यूज मी, आपने मुझे 40 साल दे दिया, मैं तो गधा के काम करता हूँ, बोझ ढो ढो कर, मुझे बाकी कुछ एंगेजमेंट में रहा ही नहीं, और शाम को कुछ खिलाता है सूखा घास, नहीं तो दिन भर काम करवाता है धूम, तो पूरी जिंदगी ही करते रहूंगा 40 साल तक, नहीं 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 टू मच, ना क्या करना ना मुझे कम कर दो, मुझे इतना उम्र नहीं चाहिए। बोलो कितना कम? ना 50% कम कर दो, आपको 50% वापस लो, हमको नहीं चाहिए, हमको 20 साल तक हम करेंगे बहुत है, गधे 20 साल तक उम्र होता है उन लोग का, तो 20 साल उन्होंने ब्रह्मा जी को वापस किया। पहले जब डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे पहले झगड़ा किया जा करके मनुष्य ने, बोले ब्रह्मा जी ये क्या कर दिया हमको, 40 साल दे, 40 साल होता क्या है, हम तो जॉब पकड़ते पकड़ते 20-25 साल हो जाता है, उसके बाद शादी भी होगा बर्बादी हो जाएगा, तो खत्म हो क्या जिंदगी में रहा क्या है? ये तो बहुत गड़बड़ किया, अन्याय खूब रोए धोरे झगड़ा के। ब्रह्मा जी बोले क्या चाहते हो ना, मुझे और कुछ उम्र चाहिए, ना भाई स्टॉक में नहीं, जब स्टॉक आ जाए तब दूंगा, है ना, वो स्टॉक खाली। बोला प्लीज नोट कीजिए, कब स्टॉक में आएगा तो मुझे बताना, नंबर देकर आया अपना। अब जो गधा ने अपने 20 साल वापस किया तो ब्रह्मा जी ने घूम के बोले, हे म्यान उम्र चाहिए आपको? हाँ चाहिए, बहुत जरूरी है ना, लेकिन समझ लो गधा की उम्र है, चलेगा चलेगा। तो आया बड़े खुशी खुशी लेकर गया, लेकर गया, ब्रह्मा जी बताए थे लेके गया उसको। तो जो 40 साल तक तो मनुष्य उम्र था, उसके बाद जो 20 साल गधा की उम्र लेके गया, तो बोला अभी खुश हूँ? नहीं नहीं अभी भी खुश नहीं हूँ, और को भी माल होते फिर बताना, मुझे और चाहिए। बोले ठीक है, अब एक स्टॉक आएगा तो बताऊंगा आपको। थोड़े दिन के बाद वो कुत्ता का फोन आया, बोले ब्रह्मा जी मेरे साथ बहनिया होगा, मैं 40 साल बसना नहीं चाहता, अब मेरे तो ऐसे ही घूमता फिरता हूँ, कोई खिलाते नहीं भगाते हैं ऐसे करते, मेरा जीवन तो सबसे बड़े दुख है, कुत्ता के जीवन तो कुत्ता के जीवन है, पेट कभी नहीं भरता। तो मैं इतना दिन पूरा जिंदगी में, मुझे बोले कितना काम करना चाहता हूँ, मेरा 50% मेरा भी निकाल, 20 साल बहुत है मेरे लिए, वो भी 20 साल वापस कर दे ब्रह्मा जी। कुत्ता 20 साल वापस कर चला गया, तो ब्रह्मा जी ने फोन किया, बोले हे म्यान अब स्टॉक में 20 साल उम्र हो रहा है, चाहिए? हाँ चाहिए, अभी जाए अभी आता हूँ, दौड़ के आया। बोले देखो लेकिन ये कुत्ता की उम्र है, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेके गया। बोले अभी संतुष्ट ना? नहीं नहीं और चाहिए, इतने में काम नहीं चलेगा। बोले ठीक है अगर आगे तो बताऊंगा। तो कुछ दिन के बाद एक उल्लू ने फिर ब्रह्मा जी के पास आया, उनका बोला देखिए ब्रह्मा जी आप मुझे ऐसा ही बनाए कि दिन भर तो दिखता तो है ही नहीं, बैठा रहता हूँ, जहाँ और कहाँ बैठता हूँ दिन में फिर पीटते। बोले तू कहाँ गया रे, बड़े अमंगल सूचक है ना, नहीं उल्लू को कोई घर में देखना चाहते? बोले भगाता ऐसे मुझे दिखता भी नहीं, ऐसे कोई देखना नहीं चाहते मुझे, ना मैं किसी को दिख सकता ना मुझे कोई दिखना चाहते हैं। ऐसे ही तो मुझे भी पूरा उम्र तक ऐसे मत कीजिए, मैं भी कम करना, मतलब कितना मेरे 50% कम कर दो। वो 20 साल वापस दिया, तो ब्रह्मा जी ने फोन किया, हे म्यान अब स्टॉक में 20 साल उम्र आया है, चाहिए? हाँ चाहिए, मैं अभी आता हूँ, लेकिन खबरदार ये उल्लू का है, यहाँ चलेगा। तो आके उसको लेकर गया, अभी 100 हो गया उसका, 40 था, 3 बार लिया, 20-60 हो गया। बोला अब तो काम चल जाएगा, और बाकी भले ना दो लेकिन इतने से कम सेटिस्फाइड हूँ, अभी तक डिसटिस्फाइड था, अभी ओके चलेगा। तो 100 साल की उम्र 20 मनुष्य ने कराया, लेकिन 100 साल में मनुष्य की उम्र केवल 40 साल का था, बाकी जो 20-20 साल तीन है ये गधे का था, कुत्ते का था और उल्लू का था। तो बता रहे हैं कि सचमुच 40 साल तक तो मनुष्य जैसा जीता है, 40 के बाद में अब देखो ये वो उन्होंने कहते, मैं इसलिए कहता हूँ मुझे मत समझना। 40 के बाद जो होता है ना वो गधे के काम करना पड़ता है, ऐसे घटना पड़ता है, काम करना पड़ता है। आप चाहे कोई होटल में खाओ, कहीं कैसे खाओ, कोई बड़े सौभाग्य हो तो घर से रोटी मिले, ना तो ना मिले, लेकिन खटना पड़ता है। 20 साल तो रगड़ काम करना पड़ता है, 40 से 60 साल तक, है ना, सब जानते हैं, जितने भी गवर्नमेंट सर्विस है, प्राइवेट नौकरी, सब नौकरी, सब जानते हैं कैसे काम करना पड़ता है, रगड़ कर। बोले जब 60 साल होता है तो फिर गवर्नमेंट प्राइवेट सब निकाल देते हैं, जयराम जी की रिटायरमेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा 55 से 60 ही तो गया बढ़ लें, उसके बाद तो निकाल लें। उसके बाद गधे की उम्र बिता करके आ जाते हैं घर में, घर में आ करके पेंशन लेकर बैठ जाते हैं। अब बच्चे अभी नौकरी कर सो काम करते हैं, तो बच्चों को कोई काम उनको पसंद नहीं आता, ये क्या कर दिया, बच्चे और बहू के ऊपर बड़बड़ बड़बड़ करते रहेंगे, तुम ये सामान इधर नहीं रखा, इधर करना चाहिए, ये साफ नहीं रखता, ये दरवाजा खुला रख देता है, ये करता है, वो करता है, भो 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 तो कितना करते रहते। तो बेटा बहू बोलेंगे पता नहीं बूढ़ा मरता क्यों नहीं, हमको अलग कर दो, हम घर नहीं रहेंगे, तो अपना क्वार्टर लेके रहते हैं, उनके साथ रहते ही नहीं। बूढ़ा बेचारा बोलता है बेटा 15 दिन के लिए आऊं, वो टेंशन में आ जाते, 15 दिन कैसे बिताएंगे, 15 दिन में हाल खराब करते हैं, वो तो भोगते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, अरे हम ही है, हमारा घर हम संभालते, तुम्हारा क्या है, बैठो ना। लेकिन बैठा नहीं जाए कुत्ता को, आप रास्ते में जाते होंगे कोई डिस्टर्ब नहीं, लेकिन तो भुकेगा तो बोलेंगे, उनके सामना नहीं जाए, बोलते रहे। बोले बोलते 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 घर में कोई रहते भी होंगे, बोलते बोलते तो 20 साल तक, मैंने 60 से 80 तक तो इस रोल करेंगे, कुत्ते का उम्र था ही, भुगत रहेंगे। और उसके 80 के बाद ना वो बोलना ही बंद हो गया, शक्ति नहीं रहेगा, बंद हो जाता। केवल ये नहीं होता, वो उल्लू के जीवन शुरू हो जाए, क्योंकि चश्मा भी काम नहीं करेगा, अब दिखेगा भी नहीं, दिन में नहीं दिखेगा, बैठे रहेंगे कुछ बोलते रहेंगे लेकिन दिखेगा नहीं, गाय आया कैसे करते, पता नहीं कोई आया पास में कोई आया, दिखेगा नहीं, फिर दिखता नहीं है। लेकिन दिखता नहीं, चुपचाप दिन भर पड़े रहते हैं, कुछ दिखता नहीं, बोल नहीं पाते बेचारे रात में, लेकिन हाल खराब करते हैं क्योंकि नींद नहीं होता, दिन में दिखता तो ही नहीं, पड़े रहते हैं खटिया में, धूप में डाल दो सोते रहेंगे खटिया में, रोटी खिला दो तो खाए, नहीं खिला खाओ दिखता है, रात भर आपको सोने ना दें क्योंकि उल्लू रात में एक्टिव होता है, दिन में इनएक्टिव। चखा से कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहेंगे, आपको सुने नहीं। तो इस उल्लू के जो पूरा सपोर्ट संचरिता को ही चलेगा। तो इस प्रकार के मनुष्य ने पहले एग्रीमेंट करके ब्रह्मा जी से लिया था, इसलिए चल रहा है उनका। तो प्रहलाद ने उनको समझाया, बोले देखो जो लास्ट के 20 साल होता है ये तो नहीं के बराबर है, किसी काम के लायक, खाने के लायक, टॉयलेट के लायक भी नहीं रहेंगे आपने, ये बुरी हाल हो जाएगा। और पहले के 20 साल भी कोई काम नहीं, बीच में जो बच गया समान कितना बचा हो, 10 ही साल बच गया। और 10 साल में तो दुनिया भर का टेंशन है, कुटुंब भरणम नवा, कुटुंब भरणम, इतने उसमें व्यस्त रहोगे, इतने आसक्ति, और कहां बचेगा तेरे भजन करने के लिए। बिल्कुल मैथमेटिकल प्रूफ हिसाब करके दिखा दिया 100 साल की उम्र, तो लड़के और सीरियस हो गए, बोले फिर करें क्या, क्या करें। बोले बोले क्या करना चाहते, हम तो सुखी होना चाहते हैं, जितने हम बैठे हैं सब सुखी होना चाहते हैं ना, कोई दुखी तो होना नहीं चाहते कभी। तो बोले सुखी होने के लिए आप चाहते तो जरूर हैं, लेकिन आप प्रयास करके सुखी हो नहीं सकते। बोले क्या ना, बोले आप लोग का ज्ञान है बच्चे, आपको पता नहीं, सुख और दुख ये कोटा आप जब आए ना जिस दिन, उसी दिन आपका खाता में लिखा होकर फिक्स होकर आया, उसी दिन फिक्स होकर आया है, सुख का कोटा और दुख का कोटा दोनों, उसी को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो आप जो बुरा परिश्रम करते हैं सुखी होने के लिए, केवल दुखी होते हैं, सुख हो ही नहीं सकता क्योंकि अब अगर है ही नहीं खाता में नहीं तो कैसे होगा। काम ना करें ना, काम करने के लिए मना नहीं करता हूं, लेकिन क्या काम करे किस लिए करे वो जानना चाहिए। तत् प्रयास न कर्तव्यम जथा आयु वय परम न तथा विन्दते खेमं मुकुंदम चरणामुज। बोले मनुष्य जीवन का क्या, समस्त प्राणियों का, प्राणी मात्र में एकमात्र लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति, लेकिन बाकी शरीर में तो हो ही नहीं सकता, एक ही शरीर इस काम के लायक है मनुष्य शरीर, तो इसलिए मनुष्य शरीर में ही एक काम किया जा सकता। तो मनुष्य शरीर का जो परम लक्ष्य है, परम गति, मुकुंद चरण प्राप्ति, यही जीवन का महानतम उद्देश्य, उस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए ही कार्य करना चाहिए। जो हाथ पैर मिला है, इंद्रिया मिला है काम करने के लिए, काम केवल इसी के लिए करना चाहिए। बोले बाकी खान पान थोड़ा खुशी मजा करने, बोले खुशी मजा के लिए काम करना नहीं पड़ता, और नहीं करो तभी मिलेगा। भाई वो सो कैसे, मैं खुशी सुख के लिए प्रयास नहीं करूं सुखी हो जाऊंगा। बोले भाई साहब दुख के लिए कोई प्रयास किया तूने ना, कभी नहीं किया ना, दुख मिलता ना, मिलता तो है। बोले जिससे जत्न किए बिना दुख मिलता है, अयत्नतः, दुख के लिए कोई जत्न नहीं करते, कोई प्रयास नहीं, इन्विटेशन कोई व्यवस्था नहीं करते, लेकिन जिसे मिलता है ठीक सुख हुई बिना चाहे बिना जत्न किए मिलेगा उसके लिए। बोलकर बोले कि हे असुर बालकों, आप उसको क्या कहते हैं? ये जो सुख और दुख है ना, वो तो सर्वत्र विद्यते दैवात, वो तो हर जोनि में हर स्थान में प्राप्त होता है, क्योंकि दैव से भाग्य के विधान है। आप कहीं भी रहो, किसी भी शरीर में रहो, आपके कोटा मिलेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। चाहे कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, कुछ हो, आपको जो सुख है वो इसी शरीर में मिल जाएगा, उसी स्थान में मिल जाएगा। हाँ, वो तो फिक्स है, वो तो मिलेगा आपको, और सर्वत्र। ऐसा नहीं कि केवल यही सुखी होंगे, नहीं, जहां जहां रहोगे, जिस जिस शरीर में रहोगे, उसी शरीर के मुताबिक सुख आपको मिलते रहेगा। सर्वत्र लभ्यते, कैसे लाभ होता है ना? दैवतः, भाग्य के अनुसार मिलता है, तेरे प्रयास के अनुसार नहीं। बोले कैसे? बोले ऐसे ही होता है। कभी कभी हम प्रैक्टिकल देखे हैं, एक व्यक्ति मीठा खाने बड़ा पसंद है उनको, तो एक बार गया था मंदिर में और गुलाब जामुन खाया, गरम गरम लाल लाल और काला काला मिक्स वाला गुलाब खाया, तो वो पहले नहीं खाया था, इतने अच्छा लगा, बड़े आदमी थे, इतने अच्छा लगा, वो पूरा पता करके आया, नाम क्या है, कैसे बनता है, सारे पता करके आया, आकर घर में को स्वीट मेकर को बुला करके सारे सरंजाम इकट्ठा किया, पूरा पैसा, एक क्वालिटी का खोआ वगैरह जो जो सब इंग्रीडियंट्स है सब मंगाया, सब मंगा करके उस दिन घर में उनका बर्थडे पार्टी दे रहा था, और सब मंगाया, मंगा करके कम से कम दो चार परात भर करके एक क्वालिटी का बनाया, सारे माल मसाला डाल करके खूब बनाया, बना करके और बिल्कुल परात भर के सामने तो मुख से पानी गिर रहा देख करके उसको, ऐसी क्वालिटी का बनाया, बना करके सबके सामने, अब खाने से कुछ समय पहले थोड़ा सा उनको शरीर में दर्द होने लगा, तो क्या दर्द होने लगा, तो इसमें कोई डॉक्टर था, अच्छा हाँ चेक करो चेक करो, चेक करके देखा कि यू आर डायबिटिक, मीठा नहीं खा सकते। अब खाएगा? नहीं खा सकते, मना कर दिया डॉक्टर ने, लेकिन उसका इच्छा था ना, नहीं था मतलब देखने से अभी भी पानी गिर रहा है, और पूरा पैसा खर्चा किया, मेहनत किया, बहुत इच्छा है, चाहता है, लेकिन नहीं खा सकते। तो इसलिए केवल प्रयास करने से, खर्चा करने से आप भोग लोगे, ये गारंटी नहीं। नहीं, बोलते हैं कि प्रहलाद जी कहते हैं, बोले ऐसे भी कई केस में देखा जाता है, अगर आपको भाग्य जोर है, भाग्य में आपको मिलने का लिखा है, आपको ये स्थान आपका होगा, ये आपका है, अगर आप आते आते आपके पर्स बिल्कुल चौराहे पर गिर गया, जहां पर हर मिनट में 10-5 लोग पास करते हैं, 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में, 4 व्हीलर में कितने पास करते हैं, वो दिन में दोपहर में वहीं गिर गया, और घर में ढूंढ ढूंढ कर शाम तक परेशान ही, याद आया अरे सर रास्ते में गिर गया होगा, गए मैं दोपहर 12 बजे था, अभी 6 बजे तक कोई होगा थोड़ी मैंने सड़क में। लेकिन अगर आपका है ना भाग्य में, अभी तक हजारों लोग गुजर गए वहां, किसी का नजर नहीं पड़ा है, वो सबका नजर को हटा कर गए, पड़ा है यहीं पर खुले में पड़ा है, और आप गए उसको उठा कर फेल लाए, 6 घंटे के बाद में इतने बिजी चौराहे पर पड़ा रहा, क्योंकि वो आपके कोटा का था, इसलिए कोई नहीं ले पाया उसको। लेकिन अगर जिस आपके कोटे का नहीं है, उसी को ला करके आपने घर में, एक तो गेट बंद, एक सिक्योरिटी खड़ा है, फिर दरवाजा बंद, फिर उसके ऊपर दूसरे कमरा, फिर आपका बेडरूम, बेडरूम के अंदर आयरन चेस्ट, उसके अंदर और एक छोटा बक्सा, उसके अंदर और एक बक्सा, 3 चाबी लगा करके रूम बंद करे सब, और चोर आएंगे सब काट पीट करके, तेरे गला काटे नहीं लेकिन उसको काट कर ले, आपका है ना, क्योंकि ये तेरे है नहीं, तो रख नहीं पाए। तो उसको मान के बोले हाँ, तो ये तो फैक्ट होता है, तो फिर कैसे होता, क्योंकि सो भाग्यतः दैवतः, दैव में तेरा जितने सुख लेकर है, जिस प्रकार का सुख तो मिलेगा ही, उसके लिए प्रयास मत करो, जैसे दुख मिलता है ऐसे सुख भी मिलेगा। तो इसके लिए आपके आपके जो हाथ पैर बुद्धि वृत्ति है, उसी के लिए मत लगाओ, जो बेकार जो पहले से रिजर्व पड़ा है, उसके लिए काई को टाइम खराब कर रहा है। जथा आयु व्यय परम केवल आपको जो आयु मिला है थोड़े दिन का वो बेकार ही यूज मत करो, फिर क्या साकार यूज, कौन सा काम में लगाओ? बोले ऐसे काम में लगाओ जो करने से ही प्राप्त होता, नहीं करने से नहीं होता। ऐसा एक काम है जो काम भाग्य में नहीं है, ऐसा एक प्राप्ति है जो दैव के अंदर नहीं है, भाग्य की खाता से बाहर की चीज है। वो फिर कैसे प्राप्त होता है? ना पुरुषार्थ से प्राप्त होता। आप अगर करोगे, आपके शरीर, आपके मन, आपके बुद्धि, आपके हाथ पैर लगाकर करोगे तब होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। इसी के ऊपर निर्भर करता है, वो इसी के लिए ही शरीर मन बुद्धि दिया गया, इसी काम के लिए, क्योंकि जो काम इसी से बनता है वो क्या है? बोले यो है भक्ति, भगवत सेवा या भगवत भजन जो है वो करने से ही होता, नहीं करने से नहीं होता, भाग्य में नहीं है। ऐसा कभी कह नहीं सकते कि अरे उनका भाग में था वो तो भगत बन गया, हमारा भाग में नहीं। बोले नहीं, भाग्य में नहीं होता, भक्ति भाग्य में नहीं है ना। भक्ति आपके ऊपर है, आप करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये आप करेंगे। इसलिए जो आपके इंद्रियां है, जो काम करने का शक्ति बुद्धि सामर्थ्य जो कुछ है, वो केवल इसी के लिए करना चाहिए। विष्णु पाद पसर्पणम, विष्णु के चरण में प्रकृष्ट रूप में समर्पण, शरणागति होना, इसी के लिए ही अपने सभी इंद्रियों को, मन बुद्धि को इसी में लगाना चाहिए। भगवत भजन ही सबसे सार है। तो लड़के लोग बोले कुमार एक बात और राउंड आउट है ना, क्या भगवत भजन करने से करने मिलता क्या? क्योंकि आजकल कोई भी चीज किसी को बोलना करने के लिए इमीडिएट क्वेश्चन करेंगे, क्या फायदा? फायदा के बिना तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं, बताओ फायदा क्या? हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, फायदा क्या? क्या फल मिलेगा? थोड़ा थोड़ा और आगे आ सकते हैं, जागत है। तो प्रहलाद जी ने बताते हैं, स्पेस है आगे आ जाइए, सुनिए। तो प्रहलाद जी ने अभी बिल्कुल ठोस बात कहना शुरू की, क्या फायदा है? बोलते कि देखो अगर आप हरि भजन करोगे, भगवत भक्ति करोगे, तो आपको जो चीज प्राप्त होगा, जो द्रव्य संपत्ति सुख जो भी कुछ वस्तु प्राप्त होगा, वो ऐसे प्राप्त होगा, उसका लक्षण बताते हैं, जन लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः। जिनको प्राप्त करने के बाद में और कुछ उससे परे है आप सोच भी नहीं सकते ना, ये सबसे जो टॉप मोस्ट मिलना था पा गया, उसके परे कुछ हो ही नहीं सकता। अधिकं तथा न मन्यते, और कुछ मन में भी नहीं आएगा कि उसके परे कुछ और हो सकता है। जंग लब्धा, जिसको लाभ करने के बाद में और भी कुछ उसके परे है, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। दूसरे लक्षण क्या है? उसके परे कुछ होने से ऐसी चीज प्राप्त हो जाएगा, भगवत भक्ति से प्राप्त होगा, और वो प्राप्त एक बार हो जाए, जस्मिन स्थिते न दुखे न गुरुनापि न विचालयत, उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद में बड़ा से बड़ा डिफिकल्टी तकलीफ आ जाए, आपको टस से मस नहीं कर पाएगा। आपका मन कभी अस्थिर हो ही नहीं, कितने बड़े भारी विपत्ति आ जाए आप बिंदास रहेंगे, ये उसके दूसरे लक्षण। इस भजन से जो चीज प्राप्त होगा वो प्राप्तता का आपको इतने ज्ञान देगा, इतने आपको स्थिति में ले आएगा कि संसार के उलट पालट हो जाए आप विचलित नहीं होंगे, बहुत विकट परिस्थिति भी आपको विचलन नहीं कर सकता। ये स्थिति भक्ति से स्थिति प्राप्त होता है, समत्व से स्थिर स्थिति। और केवल इतना नहीं है, और क्या प्राप्त होगा ना, भजन करने से भगवान की कृपा प्राप्त होता है, जो बाकी कोई उपाय से नहीं मिलता। भगवत भक्ति से भगवत कृपा प्राप्त होता है। भगवत कृपा से क्या होता है? भगवत कृपा से क्या होता? आप तो मेरे साथ ही हैं, आप खुद मुझे देखे हैं अभी 6 महीने से मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। बोले चुप तो हम भी हैं। बोले अस्त्र शस्त्र, बोले मैं आपके समान 5 साल की उम्र के बालक हूं, गोरे तक तक बिल्कुल मुलायम खा ले हमारा भी, लेकिन आप तो देखे ना कितने कितने मोटे तागड़े सारे अस्त्र हमारा पर प्रयोग किए, वो अस्त्र टूट गया मेरा कुछ हुआ? बोले हरि की कृपा अगर हो जाए ना सारे प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी आपके प्रति बेकार हो जाएंगे। हरि कृपा जिसका आप रहे कोई अस्त्र शस्त्र से आप नहीं तो हम देखें आपको हमारे साथ हमने केवल अस्त्र शस्त्र नहीं 20 भी पत्थर बन जाएगा। बोले हमारे पापा जी ने कराया था ना क्या क्या पीस इंपोर्टेड पीस लगाया था सारे डाइजेस्ट कर बैठे कुछ नहीं। बोले हाँ सुने देखे थे। बोले सांप भी डसे वो भी नहीं काम करे, सांप डसेगा भी नहीं, बड़े बड़े हाथी आकर कुछ ले तब भी कुछ नहीं, उनके हाथ हाथियों के पैर दर्द करे हमारा कुछ नहीं। ये भगवत कृपा के प्रभाव, पत्थर की ऊपर से पाषाण में पीटे, पर्वत की चोटी पर फेंक दे, समुद्र में फेंक दे, कुछ भी कोई करे कुछ नहीं मिला, बाल वंका नहीं कर सकते। बोले भगवत कृपा जिसको हरि कृपा कर ली, जिसको रखना चाहे उसको कोई शक्ति नहीं, कोई उपाय नहीं, उसको उसके बाल वंका कर दे। और जिसको हरि कृपा नहीं है, जिसको रखना नहीं चाहते हैं, उसको तो फिर कोई बचा ना सके, वो तो मरेगा, कोई बचा नहीं सके। तो सीरियस होते जा रहे हैं लड़के। मैं खुद ही आपका एग्जाम्पल सामने हूँ, उदाहरण आप खुद देखे, इसी उम्र में मैंने किया था तो यही प्रभाव है उसका। बोले अच्छा तो हम तो रियली करना चाहते हैं सीरियस, कैसे करें उपाय बताओ। बोले देखो और भी आनंद की बात है, वो भक्ति करने के जो उपाय है, दूसरे कुछ कार्य जैसा कठिन नहीं है। बोले अच्छा हम तो दिक्कत। बोले आप तो स्कूल में पढ़ना, बाकी नौकरी करना, काम धंधा पर सब कुछ तो कठिन है, क्योंकि कोई भी छोटे मोटे भी रोजगार के काम, दुकानदारी कुछ भी करना चाहते हैं, कई जगह से सामान लाना पड़ता है, इधर से ये लाओ, इधर से पानी लाओ, कोई खाना भी पकाएंगे, पानी लाओ, बाजार से सब्जी लाओ, यहाँ से वो अमान्य करने के लिए चाकू लाओ, वहाँ से गैस लाओ, है ना, नहीं क्या से मसलो, दुनिया भर का सामान लाओ भाई, एक ही करने के लिए एक घंटे भर में खा पी कर हजम कर देंगे, उसके लिए पता नहीं कितने कितने हाथ कितने कितने सामान कहाँ से इकट्ठा करना पड़ता है। बोले उसके लिए बोले कुछ नहीं करना पड़ता, इतनी बड़ी चीज के लिए ना कोई सामग्री बाहर से लाना नहीं जरूरत है, बाहर से इधर से इधर से कोई सामग्री लाने की जरूरत ही नहीं, कोई मार्केट जाए इसके पास है उसके पास है उधर जाए उधर जाए, कोई जरूरत नहीं। बोले फिर बोले सब आपके पास ही मौजूद है, एक ही क्रिया है जिसके लिए समग्र आवश्यकता द्रव्य आपके पास पहले से मौजूद है, क्योंकि इसी काम के लिए ही आप बने, ये प्रमाण है इसका। इसी के लिए जो जो आवश्यकता द्रव्य है वो आपके पास पहले से मौजूद है, आप उसको उपयोग नहीं करते। क्या कैसे? बोले भक्ति के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता है सुनना। बोले ये तो बिना कवर वाले दिए हैं, उसमें कवर है ही नहीं, सबके पास है ना, नहीं दो होल और खुल्लम खुल्ला है, 24 घंटा तक ओपन रहता है, बंद नहीं होता। बोले क्या मार्केट से लाना पड़ता है कि मैं सुनना चाहता हूँ? आपके पास बोले सबसे पहले ये जो सबसे पहले आवश्यकता है ये आपके पास पहले से दिया हो। अब दुनिया भर का कचड़ा को सुना है उसको नहीं सुन रहा, उसको सुन के उजड़ रहा है बिगड़ रहा है, लेकिन सजड़ने के लिए जो सुनना वो नहीं सुन रहा। सबसे पहले ये मुझे दूसरे सुन करके बोलना चाहिए, वो भी आपका समझूत है, बाहर से दिलाने जीव आपके पास ही है, आपके कान से सुनो आपके पास है, जीव आप बोलो आपके पास ही है, किससे धार लेना जरूरत नहीं, 2-4 दिन के लिए खरीद के लाओ, बोले नहीं आपके मेटेरियल आपके पास ही है। बोलो मुनि माँ कहते उसके बाद देखना भगवत विग्रह दर्शन करो, वो भी आपके पास है, हम चाहते देखो आपकी आंखें कहीं से खुराक नहीं। जो जो मैंने बताया नौ प्रकार की सारे मटेरियल आपके पास है, सुनना बोलना देखना स्पर्श करना गंध लेना खाना पकड़ना करना, सारे मटेरियल्स सारे इंद्रियां सभी आपके पास ही है, कहीं किसी से लेन देन का जरूरत है, बिल्कुल आप में ही मौजूद है। आप कहीं भी जाओ मटेरियल आपके साथ, ब्याग भी उठना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी ऐसी पैकेज मटेरियल है आपके साथ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। सही में मेट्रो का मतलब कोई खरीद किसी जरूरत आपके पास ही यूज करना है, और यूज करना भी इतने आसान है जो आपके पास ही किसे लेना है। बोले फिर किस समय, बोले और भी मजा की बात है, कोई समय नहीं उसके पर नास्तत्र नियम ना काल इतने छूट दे दिए हैं, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं है। भक्ति के लिए भगवत सेवा भगवत नाम आदि क्रिया जो भक्ति शुरुआत जिसमें, इसलिए कोई नियम काल रखे नहीं है कि ये जरूरत नहीं कि केवल बचपन से बच्चे करेंगे कि बूढ़े करेंगे कि हड़े करेंगे कि किसे करेंगे, बोले कोई जरूरत नहीं उसके लिए। तो पुरुष हो स्त्री हो बूढ़े हो बच्चे हो जवान हो कोई भी हो कहीं भी हो किसी पर सर्वत्र सर्वकाल सर्वदेश किया जा सकता। तो इसलिए ये मत समझो कि हम बच्चे नहीं कर सकते, क्या जा सकता। और दूसरे अगर उसको इस प्रकार से सुनना बोलना देखना भगवत विग्रह भगवान लेकर करेंगे, जो दुनिया में आप चाहते हैं, आप सभी चाहते हैं, सभी का मन में है, आप जानते भी हैं कि हम थोड़ा थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट चाहते हैं सर। लोग हमको बोले कि इतने क्या कमाया क्या ऐसे नौकरी करूं, बोले कि कितना अच्छा है, सम्मान कौन नहीं चाहे, सम्मान के भूखा सबको है ना, थोड़ा तो सम्मान मिले यार कुछ भी हो, है ना। बोले वो ना होगा फिर तो, बोले वो ना मिले, वो जो सम्मान मिलेगा इसी ब्रह्मांड में कोई भी क्रिया कर लो ऐसा सम्मान इतने जल्दी नहीं मिलने वाला, इतने जल्दी सम्मानित बाकी कोई उपाय से नहीं हो सकते। जितने ज्यादा और जितने जल्दी जिस प्रकार का सम्मान इसमें मिलेगा, आप सबको पता है, भले कोई नाई हो कि ऑटो रिक्शा चलाने वाला हो, आज उसको पकड़ो, आज ही पकड़ो उसको 12 बजे और उसको लेकर के उनको उसे फेप करके तिलक लगा करके धोती पहना करके माला दे करके खड़ा कर दो, पुलिस अफसर भी आकर पंडित जी प्रणाम भाई 2 घंटा पहले ऑटो चला रहा था उसको जूते मार रहा था रेड लाइट में, लेकिन अगर 100 रुपए पैसा कर दो ना करेगा ना, मतलब 2 घंटे में इतने बड़े अफसर जिसको सम्मान देगा, और कोई उपाय है इतने बड़े अफसर, आप पेंट शर्ट पहन कर जाओ आपको बोलेगा, लेकिन उसको करेगा पंडित जी प्रणाम राम राम। और कोई दुनिया में इसे इतने जल्दी सम्मान पाने का उपाय है ही नहीं, जितने जल्दी हो सकते। इसीलिए बड़े बड़े बदमाश चोर डकायत असाधु पुरुष भी अपकर्म करने के लिए भक्तों की आड़ लेते हैं, वही भेष को पहनते हैं, उसी भेष में काम लेते हैं, क्योंकि उसी भेष को सब रेस्पेक्ट करेंगे। सत्य युग में जब इंद्र को डर हुआ कि मेरा पुष ना चले जाए, पृथ्वी महाराज यज्ञ कर रहे थे, उनका घोड़ा चुराने के लिए राजा था, राजा का कपड़ा उतार करके साधु के कपड़ा पहना, तभी चोरी कर, चोरी करने के लिए भी तृतीया में रावण सीता को हराया, रावण के रूप में आया, किस रूप में आया, साधु के रूप में। द्वापर युग में अर्जुन कृष्ण की बहन सुभद्रा को उठा करके लिया, किस रूप में लिया, साधु के रूप में, सन्यासी बनकर। कल युग में तो घर घर में है ही है, तो क्या मतलब, तो 4 युग में रिकॉर्ड है इसको, ऐसा लोग हमेशा ही बेस लेकर करते हैं। तो ऐसा मत समझो कि अपमानित होंगे, मान नहीं मिलेगा, जिस प्रकार के जितने जल जितने जरूरत से ज्यादा आपका आशा से ज्यादा सम्मान प्राप्त होगा आपको। और क्या चाहे बोले खान पान मेंटेनेंस ये चलेगा कैसे, बोले उसका भी चिंता मत करो, जो चीज के आपको बनाना नहीं आता, कभी देखा नहीं सुना नहीं खाया नहीं, ऐसे आइटम ऐसे ऐसे आइटम मिलने लगेगा हाँ। और कुछ खर्च नहीं, बिना खर्च के खाएगा, अरे खाने के बाद भी और उल्टी रखना मिलेगा बताओ पॉकेट से तो कुछ जाने वाला नहीं, पॉकेट से आने वाला, पॉकेट में आने वाला, ये है उसका। तो फायदा ही फायदा है, लस है क्या उसमें, लस है क्या उसमें। मैं तो कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, बोला देखो आप अगर हरे कृष्ण में ज्वाइन करते हैं आपका इमीडिएट बेनिफिट तो होगा ही। बोले इमीडिएट बेनिफिट कैसे, बोले आपका कमाई जितना है हरे कृष्ण में ज्वाइन करो तुरंत बोलेंगे भाई ये नहीं खाना ये नहीं खाना, सादा सीधा खाओ, तो आपका खाने पीने में बजट कम होगा, वरना नहीं बजट कम, फिल्म देखना ही नहीं और बजट कम, ये सब खेल कर ये सब नियम का पालन करवा देंगे कि आधा बजट तो वहीं से बच जाएगा। लो हर बजट कम करा, टीवी घर में बंद करा, इलेक्ट्रिसिटी और कम करवा दें, इमीडिएट इफेक्ट है कि आपको बजट खर्चा कम हो जाए। और बोलेंगे कि भारी कीमती ड्रेस मत पहनो, धोती कुर्ता पहनो, वो तो और सस्ता में आ जाता है, 400 रुपये में जोड़ी, और कहाँ 4000 के सूट, एक महीना का तनख्वाह में एक ड्रेस नहीं मिलता, तो कितने फायदे फायदे। तो इस प्रकार अत्यंत सुखकर है, लाभदायक है, सम्मानदायक है, और कोई चीज बाहर से लाना नहीं पड़ेगा, सभी आपका पास है। बोले ये तो बाकी आप भाषा कुमार जी सब बता, लेकिन वो जिसको करें भगवान वो है कहा, बाकी सब मटेरियल तो हमारे पास हो गया, लेकिन जिसको करें वो सब भी वो कहा है। अरे वो बात पूछते वो तो सर्वत्र विद्यती है, सब जन बोले हम देखने, बोले ये आप देख नहीं पाते, लेकिन वो तो सर्वत्र है, कहाँ नहीं है, उनको देखने की जरूरत ऐसा मत पूछो, वो है ना, फिर करेंगे कैसे। बोले आप तो बस नाम कीर्तन से शुरू करो, नाम श्रवण से, वो है। बोले हमको थोड़ा महसूस तो होना चाहिए। बोले देखो, बोले दूध सब देखे ना, बोले दूध में घी आप देखें, आप एक गिलास दूध दूंगा बोले घी निकाल लो, और ढूंढ कर हाथ डालकर पूरा आगे पीछे इससे खोजेंगे मिलेगा आपको, लेकिन दूध में घी है ना, नहीं मानते तो ही, लेकिन हाथ डालकर के खोज खाच देखे नहीं मिल रहा है, दूध में हाथ डाले हुए चिकनापन तो कुछ आया नहीं, घी तो लगा नहीं, कोई स्मेल भी नहीं, रूप भी नहीं, कुछ नहीं, बोलते है उसका अंदर लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। उसको प्रोसेसिंग करने से 2-3 दिन में प्रोसेसिंग कर थोड़ा जमाओ, जमा कर मंथन करो, फिर उसको मक्खन निकले, फिर उसको गर्म करो, निकले उसी से, उसी मैटर से निकलेगा और कहीं से नहीं। बोले जथा स्वर्ण ग्राव सुस्वर्णकार प्रहलाद जी एक उदाहरण दिए, बोले जैसे जो सोने की ज्ञान जिसके पास है, वो सोने के खान में जो सोने का पत्थर मिलता है, तो पत्थर ही जैसा होता है, थोड़ा चिक 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 दिखता है, लेकिन जो स्वर्णकार है वो जानता है, उसको ले करके गर्म करके आपने प्रोसेसिंग करके उसे सोना निकाल लेता है, उसी के अंदर है, हमको तो पत्थर की तरह दिखता है, लेकिन वो समझ लेता है उसको क्रिया में करके उस प्रक्रिया के द्वारा सोना निकाल लेता है। ठीक, सर्वत्र हरि विद्यमान है, प्रक्रिया की आवश्यकता है, आप में भी है, आप इसी प्रक्रिया करो तो आपको पता चल जाएगा क्या हुआ मेरे साथ। बोले प्रोसेस फॉलो करना होता है, देखने लायक नहीं। बोले देखो ये जो फिर उनको शरीर और आत्मा का ज्ञान देने लगे, आत्मानात्मा जे षडिमा भावा, बोले ये संसार में जितने प्राणी है, संसारिक हर वस्तु है कि 6 परिवर्तन होता है, 6 परिवर्तन प्रत्येक प्राणियों के अंदर दिखे जाता है। क्या 6 परिवर्तन, बोलते हैं सबसे पहले किसी प्राणी के जन्म होता है, उत्पत्ति फिर वृद्धि बनते, फिर बढ़ना शुरू होता है, ग्रोथ होता है, फिर कुछ समय स्थिति, फिर कुछ समय रहता है, फिर उसके बाद में खाया, फिर लाया, फिर खत्म हो जाता है। ये जो छह परिवर्तन है सब में देखा जाता है। बोले हाँ, बोले छह परिवर्तन शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। सभी शरीर में, शरीर तो केवल कवर है, ढक्कन है, उसके अंदर जो आत्मा है उसी का इच्छा नहीं, उसको दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जो बाहर को हम देखते हैं कि आया था, बच्चा हुआ था, बड़ा हुआ, अभी बूढ़ा हुआ, ऐसे चला गया, बोले ये शरीर जा रहा है, वो नहीं जा रहा। बोले सो कैसे? बोले पेड़ देखता ना आपने, देखो इतना सालों से मैं देखता हूँ चौराहे पर, ये इतने मोटे पेड़ तभी से खड़ा, पेड़ देखता ना सब कई सालों से। बोले वो पेड़ में, वो आम का पेड़ जो है कितने सालों के पुराना है, कई सैकड़ों सालों, पेड़ तो पेड़ है लेकिन इस पेड़ में हर साल फल आता है ना। बोले हाँ फल तो आता है। जो फल आने का प्रक्रिया जो होता है वो है छह प्रकार का परिवर्तन। पहले फूल आता है, उगता है, फिर बड़ा होता है, बड़ होता है, फिर फल होता है, फिर कच्चा होता है, फिर पक जाता है, बड़ा होता है, फिर गिर के चला जाता है, फिर पेड़ क्यों रहता है? पेड़ में परिवर्तन नहीं है, पेड़ का जो फल उसी में छह परिवर्तन होता है। ठीक इसी प्रकार जो मूल है आप आत्मा, उसी में परिवर्तन नहीं है, ये उसको बाहर लेना शरीर में होता है। इस प्रकार के समझो, आप ये नहीं हो आप इसमें। तो इस प्रकार से उसी को मान करके उसको आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु संख्य ज्ञान को समझाने लगे। आत्मा अनात्मता वस्तु, बोले देखो ये भी अभी आपको डिफिकल्ट समझ में नहीं आ रहा है, जब भी तब कुछ दिन अपने शुद्धता नहीं करेंगे शरीर को, भजन क्रिया नाम जप आदि करके जब हृदय शुद्ध नहीं करेंगे, इसी प्रकार के ज्ञान टिकेगा नहीं, समझ भी नहीं आएगा। तो कुछ शुद्धता आवश्यकता है, जब जागा बनाएंगे तब तो टिकेगा, जगह ही नहीं हृदय, तो हृदय से कुछ जगह बनाओ खाली कर भजन करके, तब ये जो आत्मज्ञान है हो जाएगा। आत्मज्ञान से समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं, ये मेरा शरीर क्या है, ये पता चले। उस ज्ञान हो जाने के बाद में तो फिर आपको पता चल जाएगा ये आत्मा है, ये शरीर है, और आत्मा भी, आत्मा का एक स्वरूप होता है, आत्मा का एक धर्म होता है, उसका भी एक लक्ष्य होता है, वो है परमात्मा के साथ। फिर उसका पता चलेगा, फिर वही काम हम यही बताते हैं, यहां तक जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में जाने वाला है, यहां एक बार पहुंचे, ये पहुंच जाने के बाद में तो फिर आपने जो उन्नत कोटि के भक्तों का लक्षण, जो उन्हीं का लक्षण था, सब बताने लगे। क्वचित गायती, रुदती, हसती, ये जो सब भक्ति के सात्विक विकार हैं, इस विकार अवस्था को आ जाएगा, फिर तो कोई रुके रोक नहीं सकता, कोई बाधा बाधा नहीं देख सकता, कोई आपका कितने भी शक्ति, कोई कुछ अब कसर नहीं डाल सकता आपको, ऐसे हो सकता। ये धीरे धीरे स्थिति तक आ जाएंगे, और इस स्थिति में भगवान आपके बने रहेंगे। अब एक बार भगवान आपके हो गए, फिर दुनिया क्या करेगा, फिर तो जगत की चिंता नहीं, जगतनाथ की चिंतन करेंगे। इस प्रकार के उनको सीरियस करके यहां तक शिक्षा दिए, तो ये सब असुर बालक सुन रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस सारे क्लासमेट उनके सुन करके। बोले कुमार तो फिर हम तो सोचते हैं आज ही अब भी इसी क्षण शुरू कर दें हमने, तो तुरंत शुरू करा दिया उनका। लेकिन शुरू करने से पहले एक हमारा डाउट है। बोले क्या? बोले देखिए कुमार, आपका और हमारा उम्र सेम है, सेम एज के हैं हम लोग, और तुम राजा का बेटा है, हम मंत्री के बेटे हैं, हम आपको देखें हमेशा देखते हैं गली में, हम ही रहते हैं, लेकिन हमारे गुरु तो केवल यही हैं, मिस्टर संघ, मिस्टर अमर का, ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानते हैं, वही हैं हमारे, लेकिन तुम ये सब सिखा कहाँ से, हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं है, ना वो जानते हैं, ना कोई जानते हैं, ना किताब मैंने, तू कहाँ से सिखा है सब? ये डाउट है हमको, ये बताओ, ये प्रश्न किए। बोले हम करेंगे जरूर, हम सीरियस हो गए, सीख गए, लेकिन हमको पहले बताओ आपको ये पता कैसे चला। तब प्रहलाद ने सातवां अध्याय शुरू किए, सातवें अध्याय से बताने लगे उनका शंका के जो शंका था कि कहाँ से मिला आपको ये ज्ञान, उसके उत्तर देने लगे कि ये ज्ञान कैसे उन्हें प्राप्त किए। बोले आपके एज तो हमारा सेम है, 5 साल थे, कब अपने कोर्स को भी इतने पढ़ा, इस सब बारे में कितने पता चल गया। तब उन्हें बोलने लगे, हे मेरे साथी आपको पता नहीं, ये बात मैं अब रहस्य की बात में बताता हूँ। बोले पापा को भी पता नहीं है, मम्मी की तो पता है लेकिन पूरा उनको ही पता नहीं। बोले वो स्त्री है, भूल गए हो, सो जाते थे, नहीं पापा को भी पता नहीं और बाकी क्या पता, मैं बताता हूँ सुनो। बोले कैसे? बोले जब हमारे पापा ने गए तपस्या करने के लिए वंदराचल में, लंबे टाइम गए उसे निकल गए, इंद्र आदि देवताओं को खबर पड़ा कुछ दिन के बाद कि पापा एब्सेंट है और आए लड़ाई करने के लिए, पूरी ताकत से सैन्य सामंत लेकर आए, खूब लड़ाई हुआ और हार गए, क्योंकि पापा नहीं थे तो इसलिए जो हमारे सैन्य थे सो हार गए, हरा करके अरेस्ट कर लिए सब, मारपीट सब भाग गए हमारे सब लोग, तो आ करके मेरे माँ को अरेस्ट करके ले गए। बोले माँ गर्भ होती थी, मैं गर्भ में था, बोले माँ को लेकर के इंद्र ने लेकर जा रहा था और नाराज जी रास्ता में आकर मिले। नाराज जी पूछे, अरे इंद्र ये क्या कर रहा है, उनको क्यों खींच करके? बोले वो कल बताता हिरण्यकश्यप के बेटा है, हिरण्यकश्यप इतने बदमाश है, उन्होंने कष्ट दिया है, वो बेटा होने से उसको मार दूंगा, इसलिए लेकर जा रहा हूँ। तो वो नाराज जी ने बोले, डांटे उनको, बोले इंद्र तुझे पता नहीं है, वो हिरण्यकश्यप का बेटा तो जरूर है लेकिन वो असुर नहीं होगा, ये तो बहुत बड़े विष्णु भक्त होगा। ये बात सुनकर नारद जी का इंद्र तुरंत मान गए, कोई किंतु क्यों नहीं पूछा, वो जानते नारद जी का वाक्य 100% सत्य है। मान करके इंद्र ने तुरंत मेरे माँ को प्रणाम करके परिक्रमा करके छोड़ के वहीं चला गया। बाप रे बाप, विष्णु भक्त है, मैं गड़बड़ कर दे भाग गया, लेकिन वो घर से ले गया तो आधा रास्ता में छोड़ के चला। तो फिर माँ रोने लगी, नारद जी तो थे, बोले हे मुनिवर मैं घर नहीं वापस आऊंगा, बोले मेरे पति ऐसे ही बड़े बदमाश है, उनको अगर पता चलेगा मुझे कोई खींच कर ले रहा था दूसरा पुरुष, वो पता नहीं क्या करें, मेरे ऊपर किस रूप से देखेंगे, और अगर उनका एब्सेंट मेरा लड़का होगा मुझे डाउट है वो मानेंगे कि नहीं, कि बिना उनका बेटा करके मानेंगे कि नहीं। रोने लगा, मैं क्या करूँ, मुझे छोड़ के चला गया घर से, खींच ले क्या करूँ। नारद जी बड़े कृपाल थे, बोले बेटी बताओ क्या चाहते हैं, ना मुझे कृपा करो, मुझे कहीं और व्यवस्था कर दो, मैं जो वो आएंगे तब मैं घर जाऊं। नारद जी बोले चलो फिर मेरे आश्रम में चलो, मेरे आश्रम में, और एक बात मेरे कर देना पड़ेगा ना, क्या मैं चाहता हूं कि हमारे पति आए उनके सामने मेरा बेटा पैदा हो, तब तक मेरे गर्भ को कुछ ऐसे पांच बटन होता है ना, पांच बटन जानते ना, कभी फिर चलाते हैं कहीं आप बाथरूम जाएंगे तो पांच बटन दबा दो और रहा बंद, फिर जब तक आएंगे घंटे भर में पांच बटन दो, फिर वहीं से चालू होगा जहां था वहीं से, तो इस प्रकार से कुछ करो। तो नारद जी तो महायोग शक्ति के अधिकारी थे, तो अपने योग शक्ति बल से प्रहलाद के माता कयाद को गर्भ को स्पर्श में डाल दिए, यथास्थिति में डाल दी, जितने महीना का था इतने महीना मेरा आगे बढ़ेगा ही नहीं, और जब तक हिरण्यकश्यप नहीं आएगा तब तक इसी हालत में रहेगा, ऐसे स्टॉप मार कर रखती। बोले चलो असम रहो बढ़ेगा, ऐसी रहेगा 36,000 साल तक उन्होंने तपस्या किया, देवताओं के 100 साल, और इतने साल तक उन्होंने नारद जी के आश्रम में रहे, कयाद माता, और उनका गर्भ भी आज इट इज ना बढ़ा न घटा, वही रहा। और उसमें जब नारद जी के घर में रहेगा आश्रम, तो कुछ तो हमने दिनचर्या में कुछ कहेंगे, तो प्रतिदिन दोपहर में क्लास होता था, 3 से 5:30 की, 3 से 4 जो भी होता था रेगुलर क्लास होता था। बोले देवर्षि जी ने मुझे लक्ष्य करके बोलते थे, क्यों जानते थे मैं हूं, मुझे ही उपदेश मुझे लक्ष्य करके देते थे, लेकिन माँ ही था बाहर में, वो तो दिखाई नहीं पड़ता, मैं तो उनके पेट में था, तो माँ तो कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ समझ में आती थी कि वो तो सो जाती थी, लेकिन नारद जी मुझे बोलते थे, क्योंकि मुझे बोलते, बोले आपको कैसे याद रहा, माँ बोले होना तो नहीं चाहिए मुझे याद, लेकिन ये नारद जी के बोले ऋषि की भक्ति की कृपा है, मुझे लक्ष्य करके मुझे मेरे ऊपर कृपा करके दिए। क्या रब केवल मांग था, नाम मेरा था, तो इनके कृपा से एक ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया। ये केवल कृपालब्ध है, देवर्षि जी की कृपा से प्राप्त हुआ, ये तो इसी स्थिति में हो नहीं सकता। ये ज्ञान देवर्षि जी की कृपा है, बोले इस ऋषि की कृपा से जैसे मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो गया और ऋषि जी ने मुझे ये वरदान भी दिए थे। बोले बेटा तू अंदर है, मेरे कृपा से तुझे ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जो कोई प्रणति करके ऐसे एकांत श्रद्धा युक्त होकर के समर्पित होकर के इसी भाव से कोई सुने तो उनको भी आपके कृपा से ज्ञान हो जाएगा। ये भी उन्होंने कृपा करके बात है। इसलिए हे मेरे असुर बालों के साथी, अगर आप मेरे इसमें परम श्रद्धाजुक्त भक्तिजुक्त होकर मेरे से सुनेंगे, जिस प्रकार मैं गर्भ में रह करके ऋषि जी का ज्ञान को सब ग्रहण किया, आप भी इस ज्ञान को उनकी कृपा से ग्रहण कर लोगे। इसीलिए मैंने उसे मिला, तो इतने साल तक उनके आश्रम में उन्होंने सारे मुझे ट्रेंड अप किए, यही से उसे ख्या दिया। शॉर्टकट में तो बहुत लंबा दी थी डिटेल, मैं शॉर्टकट में इतना बता दी। तो किस प्रकार नारद जी के आश्रम में रह करके नारद जी ने माता कयाधु के द्वारा अरहत को जो जो सिख्या दिए आश्रम हुआ, वो सारे सिख्याए, सारे ज्ञान, सारे प्रकार के आत्मात्मा संख्य ज्ञान आदि सारे उनको सातवां अध्याय में कारण बता करके फिर बाकी बता दिया। जब बताने लगे सब बिल्कुल समझ में आ गया उनको सारे प्रमाण के साथ, बहुत पूरा डाउट उनका क्लियर हो गया, तब तुरंत उन्होंने भक्ति का कार्य शुरू कर दी। वहीं पे अंधिस्पट बोले उसे कोई स्थान काल पात्र की आवश्यकता नहीं, कहीं कर सकते, वहीं शुरू कर दी। बोले आप ही के सामने करेंगे, गड़बड़ होता बताएंगे, वहीं शुरू कर दी। शुरू कर दी तो मैं कल बताया था वो कीर्तन शुरू हुआ तो सोए थे टीचर, वो तो दोपहर का नींद ले रहे थे, डिस्टर्बेंस हो, कीर्तन साउंड कहाँ से है। आप देख करके देखे तो ये तो पूरे इंस्टीट्यूट बिगड़ा, पूरे इंस्टीट्यूट बिगड़ गया। पहले एक ही लड़का के चक्कर था, उनको लेकर आते ठीक कराने के लिए, ठीक क्या कराएंगे, सबको ठीक करा दिया। तो अब इतने डर गए, बोले अभी राजा जी क्या कहेंगे, क्या करेंगे, छिपा भी नहीं सकते। केवल राजा का बेटा नहीं, मंत्री पेशकार जितने सभी के लड़के, सारे जितने कॉलेज में स्टूडेंट थे, सारे स्टूडेंट भक्त हो गए। ऐसे पावरफुल प्रीचिंग प्रहलाद जी का था, ऐसे ऐसे पॉइंट बोले, ये बेचारे निष्कपट सरल बालक सारे को सारे होलसेल में बदल गए। तो कोई निरुपाय हो करके ये दोनों गुरु डायरेक्टर साहब संध्या नामर को दौड़े राजभवन में। राजभवन में जाकर हिरण्य कश्यप तो थोड़ा शांत हो गए, तो बोले तुम बेड में थे अपने बेटा की चिंता में, अभी थोड़ा शांत होकर बैठे, जाकर बोले महाराज महाराज सीरियस मैसेज, क्या ना कोई एक भी बच्चा और सुधरने वाला है ही नहीं, पूरी तरह से बिगड़ गए, हम बोलते बोलते थक गए, मानते नहीं हो, ऐसे हो गया। हिरण्य कश्यप बात सुनकर तो बहुत क्रोधित हो गया, बोले इसे सिखाया, खुद ही बिगड़ा था, सबको बिगड़ते ना, सारे बिगड़ गए, अभी एक ही बालक अब ऐसा ही नहीं निकलेगा, आपके युद्ध प्रोग्राम गया, सारे बन गए, एक दो घंटा में हथिया लिया सारे। तो हिरण्य कश्यप एक खबर पा करके बहुत क्रोधित हुआ, क्रोधित होकर के आदेश क्या बोल चिंता किया, बोला अब तक मेरा थोड़ा सा कहीं ना कहीं हृदय में उनके प्रति ममता था कि अंततः मेरा पुत्र है, और एक समय मेरा प्राण प्रिय था, मेरा अति स्नेह युक्त पुत्र था, सबसे सुंदर रूपवान गुणवान, इतने सुंदर व्यवहार था, तो इसीलिए मेरे अंदर थोड़ा सरल था उनको ममता, इसलिए बोलता हूँ आप लोग मारो, ये करो वो करो, करवा मरवा रहा था, मरत नहीं था, लेकिन अभी भी मरेगा कि नहीं पता नहीं, उसके भी डाउट आ रहा था, लेकिन लगता है कि अभी उनका काल आ गया है, इसलिए मैं क्रोधित इतना हो रहा हूं। बोला बोला अभी मुझे लगता है कि वह काल नहीं आया था उसका, इसलिए जिसका काल नहीं है मरण मानने से मरेगा थोड़ी हो, बच जाएगा, मरने का समय नहीं, अभी लगता है उसका ड्यू डेट आ चुका है। सचमुच ड्यू डेट खुद का आ रहा है उनका, वो चिल्ला रहा है प्रहलाद तुम्हारा काल बड़ा आ गया, लेकिन सचमुच प्रहलाद का काल बड़ा नहीं आ रहा था, किसका काल आ रहा था, स्वयं का आ रहा था, स्वयं का काल आ रहा था, इसलिए इतना गुस्सा चढ़ रहा था उसको, वो नहीं आ रहा था पहले गुस्सा नहीं आ, तो इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर के आदेश दिया उनको, लिख रहा हूं इस बार तो मैंने स्वयं स्वहस्त में मेरे सामने मेरे हाथ में स्वयं हत्या कर डालूंगा और किसी को नहीं होगा, स्वहस्त में हत्या करूंगा, कितने मेरे प्राण प्रिय पुत्र होने पर भी पुत्र हत्या करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा, आज स्वयं स्वयं मारूंगा, आज खड़ग लेकर के चिल्ला लेकर आओ उसको। तो गुरु दोनों दौड़े और बाकी स्टाफ में पुलिस में अफसर का दौड़ गए, पुलिस में दौड़ कर जाकर उन्होंने उठा के ले आए, बाकी लोग कितन करते हैं, वो तो प्रहलाद तो निर्भय है, उनको किसी प्रकार से भय नहीं था, उनको तो जो पुलिस गए थे उठाने वो कांप रहे थे, राजा जी बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्से उसका भी ना गुस्से में ऐसे आया, हिरण्यकश्यप क्रोध में लाल कांप रहा था, इतने गुस्सा चढ़ गया था उनका रिपोर्ट सुन करके, लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे नर्मल पहले आते थे इसी प्रकार आए, जितने उनके राजभवन में बहुत बड़े बड़े जो उनका मंत्री संतरी जो उनका सब परिकर लोग थे सब भी जैसे राजभवन में आए आकर के पिताजी को वहीं से दंडवत प्रणाम किए, लेकिन आज इतने गुस्से में था आज उनको उठाया नहीं, लेकिन प्रहलाद महाराज को फर्क नहीं पड़ता उठा नहीं उठा, उनका ड्यूटी तो किए बिल्कुल निडर होकर के, सारे देख रहे थे आश्चर्य होकर के, हिरण्यकश्यप देख रहा था वो फिर भी आके मुझे प्रणाम कर रहा है, तो इतने कांप रहा था गुस्से में जो आकर के प्रणाम के आराम से प्रणाम कर सामने दंडायमान सामने खड़े हो गए, तो किसी को भी मन में डाउट होगा, तो डाउट हुआ हिरण्यकश्यप बोला अरे दुर्विनीत अरे मूर्ख दुष्ट कहीं के, तुझे ये पता नहीं मेरे शक्ति के पता नहीं, तो मेरा पुत्र तू जानता नहीं, मैं अगर रुष्ट होता हूं ये तीन लोक में कोई मेरा सामना नहीं कर सकेगा, सब डरते हैं कांपते हैं, तू नहीं जानता उसको, प्रहलाद हंसकर पापा मुझे पता है ना मैं देखता हूं कई बार देखा बोला तुझे पता है देखा ना, हाँ मैं देखा पता है, बोला तू फिर बोला मैं क्यों डरू, वो डरते हैं मुझे डर नहीं है, मुझे डर नहीं ना बिल्कुल डर नहीं है, अरे तुम कहां से इतने शक्ति पाता है, डर रहता है डरता नहीं, बोले पापा जहां से आपको मिलता है मुझे वहीं से मिलता है, सप्लाई एक ही है पावर हाउस एक ही है, जितने बलवान केवल आप में क्या है, ये संसार में जितने बलवान है सारे बलवान को बल जहां से मिलता है मुझे वहीं से मिलता है, जिनके बल से आप महाविक्रमशाली महाराक्षस राज हैं इन्हीं और जिस विक्रम से इतने बड़े बड़े लोकपाल को आप विजय करके बैठे हैं उन्हीं के बल से आपके पराक्रम से मैं निर्भय हूं, हो तो घबरा बोले क्या मुझे भी कोई दे रहा है तुझे भी वो दे रहा है, वो इस देश से मैं तो किससे कुछ नहीं ले रहा हूं, मैं खुद सेल्फ सेटिस्फाइड हूं मैं किससे सप्लाई नहीं रहा हूं, बोले पापा आपको पता नहीं है वो ही दे रहा है, कौन दे रहा है कौन मुझे दे रहा है ना, बोले विष्णु विष्णु वो तो सबसे बड़ा शत्रु थे, चिल्लाने लगा बोले मेरे आंटी पार्टी है वो मुझे देता है, वो देने से मैं नहीं लूंगा, मैंने वो अगर आकर दे भी जाए सप्लाई मैं फेंक दूंगा, वो नहीं लूंगा तेरे से, उनसे लूंगा क्या, वो देने से भी नहीं पापा जी इतने गुस्सा क्यों कर रहे, थोड़ा शांत हो जाए ना, प्रहलाद महाराज शांत थे, बोले हे पिता राधा क्रोध काहे को कर रहे, क्रोध नहीं करूंगा, विष्णु का नाम ले रहा है, विष्णु मुझे शक्ति दे रहा है, तुझे शक्ति दे रहा है, वो मेरी चिर शत्रु है, बोले पापा आपके शत्रु विष्णु नहीं है, आप क्यों ऐसा मानते हैं? कौन मेरा शत्रु है? आपके शत्रु तो आप में ही है, मेरे में कौन है? मेरे शत्रु वही ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो, मिल नहीं रहा। बोले बेकार टाइम खराब कर रहे हो उनको ढूंढने में, वो कहा है तो आपका शत्रु है, वो कोई तकलीफ नहीं देता आपको, डर के मारे आता ही नहीं। बोले आता ही नहीं आपको, फिर तकलीफ कैसे देता है वो, आपका शत्रु कैसे हो सकता है? इसको आप देखे नहीं ढंग से, शत्रु कैसे आपका? मैं इतने टेंशन, बोले यही तो बोलता हूँ शत्रु वो नहीं है। कौन शत्रु है? शत्रु आपके मन है पापा, शत्रु कोई बाहर में नहीं है, केवल आपका नहीं है। ये चराचर विश्व में जितने आपके तरह है ना, बहुत गुस्से करते हैं, हूं हां करते हैं, उनको पता नहीं कि शत्रु कोई बाहर से नहीं है, शत्रु उनका खुद का मन है, उनका मन ही उनका शत्रु है। जिनका मन जिसका बस में आ गया तो ही विजयी है, और जिनका मन बस में नहीं है वो जीत सब जीते हुए भी हारे हैं। तो इसलिए पापा आप ऐसे चिल्लाना और ना को छोड़ दीजिए, कि मैं सचमुच बता रहा हूं आपके इंद्रिय आपके बस में नहीं है और आपके मन आपके बस में नहीं है। विष्णु ये वो मुझे मारना चिल्लाना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या अभी तक कर पाया अपने बताओ? मुझे क्यों डर है? क्योंकि मेरा मन मेरा बस में है। आप बताओ, एक तो गुस्सा था बदमाशी कर रहा था, और उल्टी आकर उपदेश देगा? चाणक्य पंडित कहते मूर्खाणा उपदेश ही प्रभु पे शांत, बोले उनको सांत्वना तो नहीं मिलेगा और गुस्सा बढ़ाएगा। तो हिरण्यकश्यप और क्रोध हो गया, बोला अरे निर्लज्जा, मेरे बच्चा जो छोटा सा बच्चा है मुझे उपदेश ज्ञान देना है क्या? मुझे सिखाता है, आई हैव सो एक्सपीरियंस है यार, कितने साल का हमारा अभिज्ञता है, मुझे सिखा रहा है आकर के ज्ञान देना, और गुस्सा आ गया चिल्ला। विष्णु का नाम सुना और उनको जो उपदेशात्मक बात कहा प्रहलाद ने, और गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर बोला ये विष्णु को मुझे तुझे तो मारना था, खड़ग उतार लिया, तुझे मार दूंगा आज, लेकिन तुझे जो शक्ति दे रहा विष्णु उसको पहले ठिकाना था, तुझे तो मारूंगा पहले उसको भी मारूंगा, लेकिन पता नहीं है कहां आप बोलता, तू बदमाश पता है तेरे सप्लायर विष्णु कहां है? बोले बाबा है सब जगह में, सब जगह मैं तो कितने सालों से ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा हूं तो सब जगह में। बोले आप देखते नहीं है, वो तो कहां नहीं है, सब जगह में, चर अचर जड़ चेतन सभी में है। उसके मतलब क्या यहां है? बोले यहां है, क्यों नहीं है? तो आप आसन पर बैठा था सभा भवन में, बीच में बहुत बड़ा खंभा था, पिलार था, तो उस पिलार में वो सामने हुई था। बोला मुझे तो दिखते नहीं कहीं। बोला आप नहीं देखते। बोले क्या ये खंभा में भी है? बोला बोलते हरि सर्वत्र विद्यते, आपके हरि जो शक्ति देने वाला सब जगह में है, मुझे तो नहीं मिलता है, लेकिन क्या खंभे में है? बोले पापा है क्या दृश्य तेरे में दिखता, बैठे तो है, बैठे तो है वो सदा भर बैठा है, इधर देखा घूर करके खम्भे को, उनको देख नहीं रहा है, सोचने लगा हो ना हो मेरा नंबर बढ़ गया है, चश्मा नहीं लाया, वो तो बालक है उसको शायद दिखाई पड़ रहा है, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा, और झूठ तो नहीं बोलेगा मेरा बच्चा, तो मतलब वो खंभा में बैठा है जाए, लेकिन मुझे दिखता नहीं। बोला अभी चश्मा क्या लाऊं, अभी तो एक मुक्का मारता हूं उसको, बेहोश हो जाएगा, कहीं देखता नहीं, कहीं ना कहीं तो होगा। तो ये समझ करके खड़ग हाथ में लिया था, खड़ग निकल गया तो प्रहलाद को मारने के लिए, बोला पहले हरि के मार्गो कह करके खंभा में एक मुक्का मारा, प्रचंड शक्ति से एक मुष्टि का घात किया इस खंभे के ऊपर, महाशक्तिशाली था, गुस्सा बहुत था उसका, विष्णु का नाम सुनकर के और इतने गुस्सा हुआ था, बोलता है कि इतने गुस्सा हुआ था हिरण्यकशिपु। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे कभी कभी एक सांप कभी रास्ता में सो है, आप मंगलाती जाते समय पता नहीं आपको, और आप बूट पहनकर जा रहे हैं ठंडी के समय में और उसका पूछ के ऊपर कुचल दिए, तो उसका दशा क्या होगा? पूरे खड़ा हो जाएगा पूछ के ऊपर उन्हें, वो फुत्कार करेगा, बोलते इस प्रकार गर्जना कर रहा था, फुत्कार हो रहा था, पूरे शरीर उनका रोमांच हो गया, इतने क्रोधित था। और क्रोध में उनको बोला कि देखते ही बैठे तो है इधर, इतने कंफर्म मैसेज जब मिला उनको, बोला ये सामने बैठे तो है, व्हाट ये बैठा है, अब भी उसको मारता हूं, मुझे देखता नहीं, बोले मारोगे तो लगेगा तो सही, इतने बड़े हाथ था उनको, मारा कस करके एक मुक्का खंभा, इतने बड़ा वो कंक्रीट का खंभा तो होता फिर भी टूट जाता, वो तो मणिमय खंभा था, मेटालिक खंभा था, वही से नहीं तोड़ने वाला था, बिल्कुल निद्दा। आजकल मेटल तो एक सदर पतरा चढ़ा देते हैं अंदर भाग के, बोले ऐसा नहीं था, पूरे सलीड मेटल का था, वो मुक्का मारने से उसका कोई होगा, कुछ नहीं होने वाला था खंभा का, लेकिन वो सोचा कि कुछ भी हो कुछ तो बाधित होगा, मर जाएगा बाद में देखूंगा, मुक्का में चला देगा हमें, क्रोध से जो क्रोध में आ जाते हैं ना उनका बुद्धि खराब हो जाता है, फिर क्या करते हैं उनको समझ में नहीं आता, तो इसलिए क्रोधित होकर के मुक्का मारा, मुष्टिकाघात किया, मुष्टिकाघात तो किया, खंभा तो कुछ नहीं हुआ मुष्टिकाघात में, लेकिन जैसे मुक्का खंभा में लगा एक भीषण साउंड निकला, एक शब्द हुआ, शब्द इतने भयानक शब्द हुआ, सभी का कान फट रहा था, जितने राजभवन सभा भवन में थे सब अपने कान में हाथ दिए, थर 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 कांपने लगे, बोले क्या हो गया, धरती फट जा रहा है कि ऊपर से ब्रह्मांड का छात फट गया कि क्या हो गया पता नहीं, आसपास में जितने पेड़ में चिड़िया थे सब चेंचा करके उड़ गए, जहां जहां सब गाय बछड़े थे सब रस्सी तोड़ करके पूछ उठा करके रेडी करके भाग गए, ब्रह्म लोक तक ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवलोक जख्यर आख्यस गंधर्व किन्नर अपने अपने सीट में अपने अपने लोक में खड़े हो गए, कान में हाथ दे करके बोले असमय प्रलय कैसे हो रहा है, प्रलय का टाइम तो हुआ नहीं, ब्रह्मा जी बोले अब तो ये सब प्रलय कैसे हो रहा है, ब्रह्मांड भ्रष्ट कैसे हो जा रहा है, सभी आश्चर्यचकित होकर घर से बाहर निकल पड़े, क्या हुआ करके, जो इतने भयानक ब्रह्मा जी तक जो बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मलोक में रहते थे वो लोग कहते हैं कि सृष्टि से अब तक जब से हमारा ज्ञान हुआ है सृष्टि से पहले दिन से आज तक इतने भयानक शब्द ना सुने थे ना जाने थे, हुआ ही नहीं था, इतने भयानक सृष्टि आरंभ से अब तक नहीं हुआ था, सभी डरे थे, लेकिन हिरण्य कश्यप इतने पावरफुल था वो नहीं डर रहा था, आश्चर्य जरूर हो रहा था, आश्चर्य होकर देख रहा था, इतने भयानक साउंड चारों तरफ घूम घूम देख रहा था कहां से आ रहा था, क्योंकि बिल्कुल धुआं धुआं हो चुका था, इतने भयानक साउंड हो रहा था, सब कंप कंप हिल रहा था पूरा, चारों तरफ इधर उधर देखे देखे सामने नजर को बिल्कुल फ्रंट फ्रंट सामने ही देखा एक अद्भुत रूप, उसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम भूतेषु अखिलेषु चात्मन व्याप्तिंच भूतेषु अखिलेषु चात्मन, बोलते हैं कि सत्यम विधातुम निज भृत्य, निज अपना खुद का सेवक, निज भृत्य मेरा सेवक के बात को सच्चा करने के लिए सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान आए, मेरा भक्त ने बोल दिया बैठे तो हैं सर्वत्र हैं यही हैं इसमें खम्भे में हैं दिखाई पड़ रहे हैं मुझे दृश्य थे, तो इनके बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान खम्भे से भी निकल पड़े, उनको कोई शर्म नहीं है, इससे ये प्रमाण होता है कि भगवान देवताओं को प्रिय नहीं है, बाकी कोई साधन प्रिय नहीं है, केवल भक्त वात्सल्य भगवान भक्त के प्रिय है, ना देवताओं के प्रिय है, ना सिद्धों को प्रिय है, ना जोगी को प्रिय है, किसी को प्रिय नहीं है। कमलापति नाम है लेकिन कमला के लिए इतने काम नहीं करते हैं। लक्ष्मीपति होकर भी जोगी नाम हृदय, जोगियों का हृदय धन है, लोग जोगियों के लिए भी ऐसा काम नहीं करते हैं। लेकिन भक्त वत्सल है, भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। सोचे भी नहीं मैं खम्भे से निकलूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, हू क्या समान अपमान को प्रक्षेप नहीं करते हैं। भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, सहन नहीं किया आ गए उनके बात को सत्य करने के लिए, उनकी बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए। सत्यं विधातु निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, मैं सभी जगह में हूं। मेरा अभी प्रहलाद मेरा बेटा इसे बोला कि सब जगह में हूं, इस बात को प्रमाणित करूंगा। हाँ मैं चर अचर सभी में हूं, ये जड़ खंभा में भी तो हूं। उसको प्रमाणित करने के लिए खंभे से प्रकट हो कि सब भूतेषु अखिलेषु च आत्मना, मैं सभी में विद्यमान हूं। इस बात को भी पक्के करने के लिए हमेशा प्रकट हो गए। रूपम अति अद्भुतम उद्वहन, अति अद्भुत रूप प्रकट हुआ। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, सभा भवन का इस खंभे के अंदर जो अति अद्भुत रूप प्रकट हुआ, क्या रूप था? न मृग था, न पशु था, न मनुष्य था, हाफ लायन हाफ म्यान। और हिरण कशिपु दी सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन था, तभी जमाने में सबसे एक्सपीरियंस आदमी था। उन्होंने कहीं जू में भी देखा नहीं था, कोई फोटो में भी देखा नहीं था, ना सुना था इस प्रकार क्रिएचर के बारे में कि आधा सिंह होगा रहा और आधा आदमी होगा। नीचे से जो कमर तक वो मनुष्य का दिखाई पड़ रहा था, कमर तक पेट तक मनुष्य का था, तो पैर जो था मनुष्य का था, और कमर से ऊपर तक सिंह जैसा था। वो तो पहले कभी ना दृष्टा ना श्रुत्वा, ना कभी देखा था ना सुना था, इसलिए आश्चर्य अति अद्भुत। ऐसे अब लेकर के उसी के ऊपर आचार्य लोग टीकाकर बहुत टिप्पणी किए हैं, कई उत्तर लिखे कि भगवत जो प्रकट हुए किस प्रकार, कई विचार उसके ऊपर किया गया है। केवल सत्यंग विधातुं के निज भृत्य भाषितं के ऊपर बोलते हैं कि भगवान ने आपने भृत्य, आपने सेवक, आपने भक्त के बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही आते हैं, जुग जुग में आते हैं केवल अपने भक्तों के लिए। भगवान गीता में भी बात कहते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानम अधर्म से तदात्मानम सुजाम्य हम, लेकिन आकर करता क्या, सुजाम्य आकर सृजन होकर करते क्या है? परित्राणाय साधुना, बोले साधुओं को परित्राण करने के लिए आता हूं। पर मारना तो नहीं, क्ष शब्द लगा विनाशाय, क्ष वो भी कर लेता हूं, वो साइड इफेक्ट है। च मतलब अलसो, विनाशाय दुष्कृति नाम च वो भी, च मतलब भी, वो दुष्कृतियों को मारपीट करके विनाश करना वो भी कर लेता हूं। वो मुख्य कर्म नहीं, मुख्य कर्म क्या है? साधुओं को, साधुओं के लिए, साधुओं के काम करते हुए साधु परित्राण के मैं आता हूं, वो साइड इफेक्ट ये हो जाता है। मारपीट करना ये मुझे काम थोड़ी, यही से हाउ तो करूंगा, मर मर जाएंगे सब, उसके लिए मुझे आने के लिए भगवान को कहीं मारने के लिए आना क्या जरूरत क्या है? एक से भूमि के हिला देंगे, संकर्षण भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को टिका कर रखे हैं अपने सर के ऊपर, थोड़ा सर ऐसे झिझुड़ देंगे, अरे दो मिनट में तो खेल खत्म हो जाए, सारे हवेली के समेत दिन सब हो जाए, नहीं दो मिनट से, और थोड़ा दो चार मिनट एक्सेज करते हैं, हिल जाए पृथ्वी तो दरार पड़ जाए, सब खत्म हो जाए। तो भगवान को खुद आना पड़ेगा, पड़ेगा एक सेवक जो टीका जो धरती को धारण किया है वो थोड़ा सा ढीला कर दे, इतने में सारे टस्से मस हो जाए खत्म हो जाए। इतने बड़े काम भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा हवा उड़ा दे, थोड़ा गर्मी का वोल्टेज बढ़ा दे, वोल्टेज डाउन कर दे, हर खराब हो जाए। तो उनके लिए तो कई उपाय है, किस कर सकते, लेकिन फिर भी स्वयं ऐसा रूप लेकर आते हैं भाई, इस चराचर ब्रह्मांड में सबसे दी रिस्पेक्टेड पर्सन भगवान है ना, सबसे सम्मान्य, सबसे बड़े, सबसे जेंटी भद्र लोग है। कोई बड़े आदमी, भद्र आदमी, पोस्ट पोजीशन होल्डर आदमी, प्रतिष्ठित आदमी कभी जाता है तो अपना यूनिफॉर्म पहन करके, कैमरे लगा करके सामने में अपने हिसाब से प्रोटोकॉल में जाए ना, तब तो माना जाए। बोले उनसे बढ़कर तो इतने बड़े कोई आदमी ही नहीं हो, जब आएंगे कहीं आए तो इस प्रकार हिसाब से आए। लेकिन ये क्या बन कर आए समझ में नहीं आया, ये आदमी है ना पशु है, वो ऐसे बन कर आते हैं, यही तो है। क्यों ऐसा बन जाते हैं? बोले सत्यम विधात। बोले प्रहलाद बोले ही है तो ही है, तो अपने रूप में प्रकट होते। बोले इसी रूप में। बोले प्रहलाद तो अभी नए भक्त है, उनके भृत्य बोले निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य प्रहलाद तो अभी 5 साल का है, अभी तो चयन किया, अब तो नवागत भक्त है, सीनियर ड्यूटी थोड़ी है उनके, और पुराने बहुत सीनियर ड्यूटी है। बोले कौन सीनियर ड्यूटी है? बोले ब्रह्मा है, ब्रह्मा के वचन, ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था। बोले ब्रह्मा से भी सीनियर मोटी बूटी और है। बोले कौन है? बोले खुद हिरण्यकशिपु, ये सबसे सीनियर मोस्टी बूटी है, जानते हैं ना कौन था वो? ये वैकुंठवासी है। तो वो सीनियर, वो जो जो बोला उन्हीं की बात को, टीकाकार लगता है कि हिरण्यकशिपु के बात को सत्य करने के लिए भगवान आए। बोले कौन से हिरण्यकशिपु की बात? बोले हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल इंद्रिय संयम करके, एकाग्र मन, एकाग्र चित्त होकर के, दृढ़ भाव से ब्रह्मा जैसे जगत सृष्टा के वेद गर्भ के सामने उन्होंने प्रकट करके बोला एग्रीमेंट के साथ कि मैंने जल में नहीं मरूंगा, स्थल में नहीं मरूंगा, आपके सृष्टि में किसी प्रकार झील में नहीं मरूंगा, सभी डायग्राम बता दिया। तो उनके बात को सारे सत्य करना था। हिरण्यकशिपु ने जो जो बात कहा सारे बात को ओके करना था ठाकुर जी को, क्योंकि उनके सीनियर ड्यूटी हुए थे, इसीलिए वो जो लिस्ट कर लिया, वो लिस्ट से बाहर के बात हो तभी ना, वो लिस्ट में नहीं 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 कर लिया तो लिस्ट वाला में तो ब्रह्मा जी के सृष्टि में जितने प्राणी देखे थे सुने थे वो तो सुबह आ गए, लेकिन ब्रह्माष्टी के सृष्टि से बाहर ऐसे कोई प्राणी होना चाहिए, तो इसलिए ऐसे प्राणी बने जो ब्रह्मा जी के सृष्टि के बाहर है, सृष्टि में है ही नहीं, हाफ लाइन हाफ में आ, ना दृष्ट हुआ ना श्रुत हुआ ना देखा ना कोई पढ़ा ना जाना, ब्रह्मा के सृष्टि में है ही नहीं, इसलिए अद्भुत रूप ले सत्य उनके बात करने के लिए। और क्या सत्य? बोले सनकादि सभी का सत्य किए। बोले हिरण्यकशिपु ने एक एक बोला था ऐसे रूप में नहीं, तो इसलिए ऐसे अद्भुत रूप लिए जो उनका लिस्ट में था नहीं, वो लिस्ट ओके किया। वो बोला था मैं किसी के द्वारा अवध्य हूं, बोले कि कोई नहीं मार पाएगा, तो इसलिए खुद आए उनको मारने के लिए, बाकी तो कोई मार ही नहीं सकता। अभी मारेंगे उसको, मारे नहीं है, सत्य प्रमाणित करते हैं, बोलते हैं कौन मारेंगे कैसे? बोले कोई अस्त्र शस्त्र, क्योंकि बोला था कोई अस्त्र शस्त्र मारूंगा नहीं, पहले से उन्होंने पक्का कर लिया था कि उनका कोई अस्त्र शस्त्र मारूंगा नहीं, तो इसलिए कोई अस्त्र शस्त्र से मारेंगे नहीं, बिना अस्त्र में मारेंगे उसको। और बोला था कि देखो ना जल में, ना स्थल में, ना आकाश में, ना घर में, ना बाहर में, तो इसलिए घर से बाहर में भी नहीं, उनको दरवाजे पर ले जाएंगे, दहली पर बैठेंगे। बोले ना घर है ना बाहर है, दरवाजे बंद पर बैठेंगे। बोला था दिन में नहीं मरूंगा ना, वो दिन रात नहीं बिल्कुल, शाम के समय मरूंगा, ना दिन है ना रात, संधि समय है, इसलिए हिरण नरसिंह भगवान का जो प्रकट है ना यही समय है, गोधड़ी समय, वो ना दिन में आता ना रात में आता, इस समय में। और बोला था ना मैं कोई सजीव से मरू ना निर्जीव नहीं मरू, और नाखून से मारे उसको, नाखून सजीव है ना निर्जीव है, पता है ना, एक तो अस्त्र शस्त्र तो है नहीं, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना सजीव है ना निर्जीव है, उसको जीवित भी नहीं कह सकते, निर्जीव भी नहीं कह सकते, नाखून एक ऐसा चीज है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। तो इसी प्रकार से सारी बात को एक एक सत्य प्रमाणित करने के लिए प्रहलाद से लेकर के सृष्टि में अब तक जितने निज भृत्य हुए हैं, जितने भक्त हुए हैं, सभी के बात को पक्का प्रमाणित सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान एक ही काम में हजारों के बात को टिक मार देते निज वृत्तियों का जब जब जहां जहां जो वाक्य कहते सभी को सत्य प्रमाणित कर डाले। करके इसे प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप का डरा नहीं था तो डटा। वो जो तलवार निकाला था ढाल निकाला था प्रहलाद को मारने के लिए, प्रहलाद भूल गया इसको देख उनके ऊपर वार शुरू कर दिया। तो नरसिंह भगवान लड़े उनके साथ, थोड़ा लड़ाई हुआ। बोले लड़े क्यों, जो मारने के लिए मार देते। बोले नहीं, वो तो मारने के बाद अभी हुआ, वो जो पहले जमाने से उनका अग्रीमेंट हुआ था थोड़े लड़ेंगे, इसीलिए वो आए तो थे, वो रोल किया था, वो शत्रु बना था उनके साथ लड़ने के लिए, थोड़ा वो तो लड़ेंगे ना, जिस काम के लिए आए वो काम तो करें, तो थोड़े समय लड़े। ब्रह्मा जी आगरा का प्राण निकल रहा है, अंदर जा रहे, बाहर आ रहा है, अंदर आ रहे, सारे देवताओं ने पर्दा के पीछे शिव कर देखते हैं, बंद देखता है, बंद कर दो कि दृष्टि पड़ेगा, वो जानते हैं आज अगर बच जाएगा हो काल तो इसी पिटेगा, हम देखा था खड़ा देख रहा था नहीं तो इसलिए डर के मारे डर डर के कभी देखते बंद करते देखते इसे देखते थे सारे चारों तरफ देवता को। और लड़ाई चल रहा था, लड़ाई करते करते हिरण्यकश्यप भगवान के चंगुल से निकल गया, खिसक गया। सारे देवताओं को तो एक साथ में मूर्छा हो गया, मूर्छित हो गए, बोले हो क्या गया, बच गया प्रभु के हाथ से, अरे ये कैसे संभव है, गया तो बच गया। ब्रह्मा तक तो थर थर कांप करके प्रार्थना कर ले, प्रभु ये क्या कर रहे, भगवान तो खेल कर रहे थे। मार्जार दत्त सुखदेव गोस्वामी दो उदाहरण देते हैं, बोलते हैं कि खेल कैसे करते, बोलते जैसे गरुड़ सांप को मारने से पहले गरुड़ सांप के साथ जैसे खेलता है, और दूसरा जैसे बिल्ली चूहा को खाता है ना जो खेलता है। आप कभी देखे गरुड़ सांप तो लड़ाई देखे नहीं होंगे, लेकिन बिल्ली चूहा का खेल देखे आप लोग, बोलते हैं देखे कभी, मतलब वहां तो बहुत चूहे होंगे। बिल्ली जब चूहा को पकड़ता ना वो सीधा सांझा मार तुरंत नहीं खाता, पहले चूहा को देखता, चूहा भागता पूरे जाता है पकड़ लेता है, मुझसे पकड़ के झूठ देता हूँ तो 75% मर जाता है, तो मान लेता मर गया तो पकड़ लिया आओ तो बिल्ली के मुंह से जाऊंगा, पकड़ के हिला देता है उस दांत से तो बिल्कुल अधमरा हो जाता है वो, तो उसको पूरा मारता नहीं खाता नहीं तो उसको छोड़ देता है, छोड़ करके दो पैर पीछे आकर बैठता है, जैसे कुछ नहीं जानता ऐसे ऐसे करता बैठता है, थोड़ा नजर करता है इधर उधर देखता है, चूहा तो धड़ धड़ हार्ट बीट करता देखता है, बोलते हैं उसको कोई पड़ी नहीं, इधर उधर देखता है, छोड़ दे शायद मर्सिबल हो गया, छोड़ दिया मुझे शायद छोड़ दिया, पूरे शक्ति निकाल कर थोड़े से जाना तो निकल जाना चाहते टूट पड़ता जाकर, फिर जाकर छोड़ देता, बोले अरे जो हड्डी पिछली था वो भी खा सब चकना चूर कर दिया, तो फिर छोड़ के फिर आके बैठता है, क्योंकि वो थोड़ा उनका स्वभाव है, बिल्ली के स्वभाव होता है थोड़ा बहुत खेल के बाद में खाता, डर नहीं खाता, बोले ये बिल्ली के अंदर स्वभाव आया कहाँ से, वो उन्हीं से आया, वो स्वभाव उनके है, इसलिए वो खेल करना चाहते हैं थोड़ा। अब बिल्ली जो आप शेर नहीं देखा है ना, ऐसे कहा बात है शेर जो नहीं देखे हैं तो बिल्ली देखो, बिल्ली और शेर में कोई अंतर नहीं है, केवल उसको एनलार्ज कर दो शेर हो जाएगा, ये छोटा है बड़ा बस इतना ही, बाकी सेम डिजाइन है, जो उनका भी चार पांच मूछ पांच बाल, उसका पांच बाल ही हुआ, उसका ज्यादा ही नहीं मूछ में, उसका ज्यादा मूछ में गिन करके पांच पांच बाल होंगे और बिल्कुल चाली भी जैसा है, और बोली बोली ना चाली जैसा, जैसे उसका साइज है सब इसी प्रकार की है, केवल उसको बड़ा कर देने से एनलार्ज कर देने से शेर हो जाए, ठीक इसी प्रकार शेर के रूप में भगवान आए, तो इसलिए स्वभाव भी उनके अंदर दिए हैं, तो इस प्रकार खेल करते थे हिरण्यकश्यप छोड़ देते, तो और अगर मतलब वो हिरण्यकश्यप सोचता हार गया और दूसरे शक्ति अस्त्र लेकर आता था, लेकिन बहुत जो देवता लोग ने खूब कांपने लगे, प्रार्थना करने लगे प्रभु मर जाएंगे हम लोग, हम ही मर जाएंगे, वो मरेगा कि नहीं हम ही मर जाएंगे इस प्रकार उसका रास्ता, हम ही मर जाएंगे प्रभु प्लीज, तो फिर बोले चलो ये लोग बहुत डर रहे हैं, अभी नहीं तो थोड़ा और ड्रामा करते, बोले नहीं वो बहुत डर रहे हैं इस लेन टाइम तक रहेंगे नहीं तो फिर भगवान बोले चलो जल्दी मार देते हैं कोई बात नहीं, तो फिर उनको उठा कर ले गए, खेलते 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 उठा के ले गए गोद में, गोद में लेकिन उनके प्रिय भक्त उनका है इसलिए गोद में बैठा है, गोद में बैठा कर ले गए, ले जा करके बिल्कुल दहल के ऊपर बैठा कर गोद में ले करके नाखून से फाड़े, नाखून से शिला टंका नखल शिला के जैसा कठोर वक्ष को नाखून में फाड़ डाले, फाड़ डाले नाखून, नाखून में फाड़ डाले। सारे देवता लोग देख रहे थे, अभी थोड़ा पर्दा ठीक से खोले, पर्दा ठीक से खोले अभी देखते हैं, कोई चश्मा लगाया कोई ये लगाया, झुल के देखे बिल्कुल बिल्कुल बख्या फाड़ गया था, फाड़ दिए थे बख्ते को नाखून से, रक्त के फव्वारा निकल रहा था, पिचकारी उतर रहा था, हिरण खूब माल खाया था मोटा सा, ऐसे पिचकार के होश पाइप की तरफ ब्लड निकल रहा था चारों तरफ, ऐसे सर हो गया, नीचे से मुकुट गिर गया, नीचे बिल्कुल बड़ी काट मर गया, मर जाने के बाद शरीर तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो देवता अश्व ब्रह्मादेव तो खूब खुश हो गए, ग्रह निकल गया, कांटा निकल गया, मर गया, लेकिन मर गया थैंक यू कहने के लिए आएंगे प्रभु आपको थैंक यू आपने कर डाले, डरते हैं क्यों, पास में क्यों नहीं आते, ना अभी भी डाउट है सचमुच मरा है कि जीवित है, देख तो रहा है छाती फट गई, ब्लड तो निकल रहा है, लेकिन क्या पता उनके ब्लड फिर उठ जाए, उनके अंदर ब्लड कमी है क्या, है संसार भर का चीज खाया हो, सब जगह भाग खाया आपने, सभी ऑल इन वन, तो इसलिए नहीं आ रहा था, तो भगवान बोले कि उनको विश्वास ही नहीं मरा है, मरा के नहीं मरा, तो उनको विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने एक और अद्भुत क्रिया की, सारे अद्भुत किए, उनके फाड़े तो था बख्खे को भी, आंत को फाड़ दे, पेट को फाड़ डाले, वो आंतड़ी को निकाल खींच करके, आंत को बहुत बड़ा आंत था उनका इंटेस्टाइन, उसको खींच करके लाए और खुद जाकर के उनके मारने के बाद उनके सिंहासन पर बैठ गए, बैठ कर बोले बैठा हूं मार डालो, कोई माला भी नहीं पहना था मुझे, तो माला फूल के माला तो था नहीं, सीधा इंटेस्टाइन को आंत को निकाल करके ब्लड टपक रहा था ताजा, उसी को पहन लिया। एक तो मुंह था सिंह का, सिंह देखे हम लोग फोटो देखे होंगे तो, ये वाला तो केसरी सिंह होता है, वो सिंह कितने भयानक होता है, और जो गुस्सा करता है और कितने खतरनाक दिखता है, और उसके ऊपर में इतने भयानक गुस्सेदार सिंह के ऊपर ताजा ब्लड टपकता हुआ आंत निकाल करके गले में पहन ले, पूरे उसके आयाल सब रक्तक्त हो जाए, कितने फ्यूरियस भयानक दृष्टि है, दृष्टि है उसका रूप है, उसको पहन लिए, क्यों आंतड़ी पहन लिए, उसका और भी एक कारण भागवत व्यक्त है, टीकाकार कहते हैं क्योंकि भगवान भले सिंह रूप में है लेकिन भगवान तो भगवान है, परमम पवित्रम पवित्रम परमम धामम, सबसे पवित्र परम पवित्र भगवान है, बोले परम पवित्र आंत कैसे पहन लिए, सुगंध फूल की माला पहनते तो ठीक होते, बोले आंत नहीं था वो परम पवित्र था, इस आंत में भगवान कई साल तक बैठे हुए थे, ऐसी कथा आया अष्टम स्कंद में है कि जब हिरण्यकशिपु दौड़ करके वैकुंठ तक पीछे किया था विष्णु का मारने के लिए, भगवान विष्णु सोचे ये तो खूब बाहर ढूंढ रहा है मुझे, बेचारा तो टेंशन है उसका खराब, अभी बहुत मूड खराब, मैं इसको सामने क्या जाऊँ, छिप जाता हूँ, कहाँ छिपूँ, वो कहीं नहीं छोड़ेगा पीछा पड़ेगा, तो भगवान ने एक मच्छर बन गए, छोटा सी मक्खी जैसे बन करके उनके नोस्ट्रल उनके नाक के छेद में घुस गए, घुस करके सीधा जाके उनके आंतड़ी में बैठे, आंत में बैठे, वहीं बैठे रहे भगवान, वो बेचारा पूरे दुनिया जलस्थल आकाश ढूंढ लिया कोई है नहीं, उसका अंदर ही बैठे, अंदर को नजर जाता नहीं, बहिर दृष्टि है इसलिए ढूंढ कर नहीं मिला, वो इसीलिए जब अंदर बैठा था तो इसलिए परमात्मा एक कारण का रहस्य अंदर वो थे, और जो अंतने में थे जब भगवान रहे भगवत निवास स्थली वो क्यों साधारण, वो तो माला के जो के भगवान के माला पहनने जो के, तो आंत को निकाल कर पहन डाले, सारे देवताओं कन्फर्म हो गए, अब तो माना तो डेथ सर्टिफिकेट इशू, तब आए निकट में, तब निकट में आएंगे, अब स्तुति करेंगे काल क्या क्या होगा घटना। अब आज भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो चुके हैं, हिरण्यकश्यप कुमार किसे करते हैं उनके वंदना हम डेली डेली गाते हैं। हम तो नरसिंहदेव हमारे सब टिका लिए हैं, गाड़ी में बैठे तभी, घर से बाहर निकले तभी, आए तभी, सभी आरती के बाद में जब भी जहां देखो विघ्न विनाशक के रूप में टिका लिए जुग भर के लिए, जुगांत के लिए, जुग जुग के लिए। तो प्रकट होते हैं भक्त लोग, जो उनका वंदना गाते हैं जयदेव गोस्वामी की रचना से।
तब कर कमल बरे नख माधुत
कर कमल, आपके हाथ तो हस्त कमल है, कमल से नाखून होता है क्या? बोले ये क्या अद्भुत और है। तब कर कमल बड़े नखम अद्भुत, अद्भुत नाक कमल में भी उठा। बोले नाखून भी कमल से अगर होगा कि इतने कठिन है कि हिरण्य की भी छाती की फाड़ दे, ये बड़े और अद्भुत है। ऐसे अद्भुत से अद्भुत भगवान नरसिंहदेव इस प्रकार प्रकट होकर करे राक्षस राज हिरण्यकश्यप को विदार कर डाले। जैसे खेल खेल में कोई हाथी कोई एक पुष्प को फाड़ दे, इतने भगवान शक्तिशाली है, भक्त के लिए करने के तैयार हो गए। नरसिंह रूप लेकर प्रकट होकर के हिरण्याक्ष को विदार करके इस प्रकार किए, इस प्रकार रूप में आज पर्यंत सत्य युग से हजारों हजारों लाखों हजारों साल बीत गया, अभी भी हम पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। किसकी आरती उतारते हैं? भगवान नरसिंहदेव प्लस डेड बॉडी ऑफ हिरण्यकश्यप को देखो उसमें, क्योंकि वो उनके भक्त था, उनके रोल उसमें है। हाँ, जब भगवान की आरती गाते हैं तब कर कमल वर्ण हिरण्यकश्यप के नाम आता ही है। हाँ, आरती में भी उनका नाम गाते हैं, डेली डेली आरती में उनका नाम गाया जाता है। वो जो फूल फेंकते हैं नरसिंहदेव के पास नहीं जाता, वो गोद में उन्हीं के ऊपर जाता है, हिरण्यकश्यप के गोद फटता है फूल फेंकते हैं, तो उनका आरती लेता है। तो साधारण मत समझो, वो साधारण नहीं। इस प्रकार आज तक सकल प्रकार के भक्ति के विघ्न को विनाश करने के लिए, भक्तों को इस प्रकार डर से भय से बचाने के लिए भगवान ने एक ऐसे लीला किए ताकि युग पर्यंत जब तक चंद्र सूर्य रहेगा जो भी भक्ति करना जाएंगे, कोई भी विपद कोई आपद कोई डर हो तो उन्हीं को याद करेंगे, उससे निर्भय होकर भक्ति आदरण कर सकते हैं। बोलो भक्ति विघ्न विनाश कसि नरसिंहदेव भगवान की, समवेत भक्त वृंद की, ताय गौर हरि विमानंदे।
हरे कृष्णा। बहुत ही